अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के दिन में भी हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो खैर रखी हुई है हम उसका हक अदा करें। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों को अल्लाह ही के रास्ते में इस्तेमाल करने के बाद शुक्रगुजार बंदा भी बना दे। कुरान पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की लग जाती है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है इस दुनिया में, अगर हमने इसका यहाँ हक अदा ना किया तो कहीं वहाँ जाकर लेने के देने ना पड़ जाए। दुनिया का एक असूल आपने देखा होगा कि जो डेट से ऊपर हो जाती हैं पेमेंट्स, तो कभी कभी उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा चार्ज होता है। वो क्या है उसको तो छोड़ दीजिए, बस यहाँ ये समझ लीजिए कि जब नेमतों को दुनिया में नेमत समझ कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को पूरा इख्तियार है कि कल वहाँ जाकर हमसे उनके बारे में पूछ ले। और जो बंदा अपने आप को खुद पूछ ले फिर अल्लाह ताला उससे कम ही पूछते हैं। इंशाल्लाह ताला आज हम सूरत यूनस को कंटिन्यू करेंगे आयत नंबर 71 से, और आज के पूरे वक्त के दौरान आप अंबिया कराम के इर्द गिर्द ही अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि ये वो हस्तियाँ थी कि जिन्होंने हमें अल्लाह का काम करना सिखाया और अल्लाह ताला का काम करके भी आजिज़ रहना सिखाया, और नतायज से बेपरवाह होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर नज़रें लगाना सिखाया। क्योंकि जब तक हमारी ये किरदार साजी नहीं होती, इसके बाद आप और मैं बिल्कुल भी अपने आप को उस काम के काबिल नहीं करते। आइए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फाउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीम वला आली इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। सूरत यूनुस, जो एक नबी के नाम पर सूरत है, हकीकत यह है कि उनकी कौम के साथ अल्लाह ताला ने जो मामला किया जो आम तौर पे नहीं किया जाता, समझ लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे यहाँ से अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर मुख्तलिफ अंबिया कराम की बातें और उनकी कौमों का जो उनको जवाब था वो तो इतना वाज़े है, लेकिन आज आपने सुनते वक्त जिस चीज़ पे गौर व फिक्र करना है कि अगर हम आज के मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के मुसलमानों से जोड़ें, रिलेट करें, तो आपको क्या लगेगा। हर दौर के नबी ने पैगाम पहुंचाने का हक अदा किया और कौमों ने उसको झुठलाने का हक अदा किया। ये जुमला आज बार बार आपने याद रखना है। और अल्लाह ताला जब अंबिया कराम को भेजता है तो उसके साथ ही सच्चा दीन भी होता है। और एक दो जुमले याद रखिए क्योंकि आज के पूरे सबक पे कससुल अंबिया हावी है, और अमूमन हम ये सोच के सुनते हैं अच्छा ये स्टोरीज हैं, ये तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई हैं, लेकिन अंबिया कराम की कहानियाँ असल में आईने हैं हर दौर के मुसलमानों के लिए कि देखो अगर तुम्हारा दौर वो ही क्यों ना होता जिस दौर में नबी खुद मौजूद थे, तो तुमने करना वही था जो आज तुम कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह के नबियों के सामने भी उसी तरह से ज़ुबानें खोलते हैं जैसे कि वो आज खोलते हैं, तो अल्लाह ताला आपको मुझे इससे महफूज रखे। आयत नंबर 71 सूरत यूनुस, वत्लु अलैहिम नबा नूह, और आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि मेरी कौम अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर बिमा अपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस ना होनी चाहिए, फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है आपको, अल्लाह के लिए काम करना भी दिख रहा है, और सच्चा दीन हमेशा जब भी पेश किया गया रिएक्शन आता है। और ऐसे वक्त में अगर नबी को खुद अपनी बात पर यकीन न हो तो वो कभी भी उस रिएक्शन को फेस नहीं कर सकता। इसीलिए फिर यहाँ जो बात की कि कबूर अलैकुम, तुम्हें बोझल लगता है, तुम्हें मेरा ये बात करना, तुम्हारे सामने खड़ा रहना तुम्हारे बीच में अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम जो करना चाहो कर लो। फिर भी अगर तुम एतराज़ ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मे है और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों से रहूँ। बस वो लोग इनको झुठलाते रहे, बस हमने इनको और जो इनके साथ कश्ती में थे निजात दी और इनको जानशीन बनाया, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था इनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कैसा इंजाम हुआ इन लोगों का जो डराए जा चुके थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने और रसूलों को इनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वह इनके पास रोशन दलीलें लेकर आए, बस जिस चीज़ को उन्होंने अव्वल में झूठ कह दिया हो ये ना हुआ कि फिर इसको मान लेते। ये नोट कर लीजिए, एक दफा जब ना मुंह से निकल जाती है तो वहां में कम ही बदलती है, यानी अना का शिकार हो गए कि अब हम थूक कर कैसे चाटें, हमने अब नो कह दिया, आप सही कह देंगे तो फिर दूसरे लोग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और इस तरह की बातें अल्लाह ताला इसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। ये अल्लाह ताला बंद कब लगाता है? जब बहुत दफा आपके पास हिदायत की कॉल आए और आप उस पर दरवाजा ना खोलें। दिल का दरवाज़ा अंदर से खुलता है और जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे कोई दूसरा खोल नहीं सकता। तो ज़िंदगी में जब कभी हक आपके सामने आए, पेश किया जाए, फौरन कीजिए। फिर आप देखिए कि जब आप असल दीन पेश करेंगे ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप डाइल्यूटेड दीन पेश कीजिए, लोग आपसे खुश हो जाएंगे। हज़रत नूह ने कौम को अल्लाह से जोड़ना चाहा, ये अल्लाह से तो ना जुड़े लेकिन नबी की तरफ पलटने लगे ताने देकर और इस तरह की बातें। और एक और बात याद रख लीजिएगा कि आप दीन की बात करें नमाज में कोई बुरी बात नहीं, आप रोजे की बात करें, फजीलतें बयान करें, हज के मसाइल बयान करें, लोग खुशी खुशी कबूल करेंगे। जहां आप वो बात पेश करें जो लाइफस्टाइल से टकराए, जो गुनाहों से टकराए, जो बाप दादा के तौर तरीकों से टकराए, तो कबूर अलैकुम, फिर वो कबूर आ जाता है, किबर से ही ऊपर की बात हो जाती है। तो बात सच है कि नबियों ने पहचाने का हक अदा किया और कौमों ने छुटलाने का हक अदा किया, और जब एक इंसान इस चीज़ के अंदर अपने आप को खपा लेता है तो फिर ऐसा ही होता है। फिर इसके बाद देखिए कि आयत 61 से 74 जो आयत है इसमें हमने क्या सीखा। तिलावत कुरान अल्लाह ताला का महबूब अमल है, अल्लाह ताला के दोस्त कौन होते हैं हमें पता चल गया। अब दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक दे। शिर्क की बुनियाद यकीन नहीं गुमान है, यानी जस्ट अजम्पशंस, इसने ये कर दिया, इसने नुकसान दे दिया, ये और वो, यानी ये दे देंगे, ये दुआएं सुनते हैं, ये बेटे देते हैं, ये फलां करते हैं, यानी कहीं भी शिर्क है, चाहे मुसलमान में शिर्क है या गैर मुस्लिम में, उसके पीछे यकीन नहीं है, सिर्फ गुमान है, मिथ्स हैं। अल्लाह को औलाद की ज़रूरत नहीं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पुरसोज वाज, वो तो हम आगे पढ़ेंगे जब वो सूरत हूद में अपने बेटे के सामने बातें करते हुए दिखेंगे। अब इस चेन को बढ़ाया गया और इसी के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने क्या किया, यानी ये नबियों का सिलसिला ऐसे ही नहीं रोक दिया गया कि जहाँ दिल चाहे इसको इंटरप्ट किया जाए। सुम्मा बसना मिम बादिही मूसा व हारून, फिर इन पैगम्बरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, बस उन्होंने तकबर किया और वो लोग तो मुजरिम कौम थे। नोट कीजिएगा, तकबर के साथ हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा समझने का एहसास, इतना बड़ा एहसास होता है कि इंसान फिर किसी दूसरे को समझता ही नहीं कुछ। फिर जब इनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो वो लोग कहने लगे कि यकीनन ये सरीख जादू है। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस सही दलील की निस्बत जबकि तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमेशा जादू का जिक्र आता है, तो याद रखिए कि जादू को इतना आसान नहीं है कि जिसको पकड़ा घोलकर पिला दिया, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए और हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। तीन बातें करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुखाया है इन लोगों ने। एक तो आबापरस्ती, बाप दादा हमारे बड़े हमारे वो, क्या आप हमें उन तरीकों को छोड़ने को कह रहे हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारे खानदानों में चल रही थी? क्या आप हम रिवायतों को छोड़ दें? आज भी लोगों का बहुत बड़ा मसला यही है, इसी बात पे नाराज होते हैं। और याद रखिए कि दीन बताने वालों की करेक्टर असेसिनेशन करना हर दौर के लोगों का पसंदीदा काम रहा, और वो यही चाहते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। और ये खुलकर बात भी ना कर सके, लेकिन अल्लाह के नबी हक के साथ होते थे, इसलिए वो इस इल्ज़ाम पे भी नहीं परेशान हुए कि हाँ जी आप तो बड़ा बनना चाहते हैं। ये दूसरी बात उसको हमने कही और साथ ही कह दिया हम नहीं मानेंगे, हमारे सामने कोई आकर ये बात कह देना तो यकीन करें हमारा मोरल डाउन हो जाए, हम बिल्कुल गिरने लगे, एतमाद ख़त्म, और कहने लगे बस जी अब आज के बाद हम नहीं बात करेंगे, कौन इनकी बातें सुने, अल्लाह के नबी ऐसा नहीं करते थे। एक मियार अपने लिए लिख लीजिए इससे पहले कि इट्स टू लेट, आप कोई काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या फिर अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने किसी जज्बे की तस्कीन के लिए कर रहे हैं, आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, आपको इस चीज़ का ज़ौक है, आपको इसका शौक है, या तीसरा एक क्राइटेरियन के लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सूरत में यही तो पढ़कर आए इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनी, यदि मोमिन तो अल्लाह के लिए बिका होता है ना, लेकिन कुछ लोग लोगों के हाथों और कुछ अपने हाथों बिक जाते हैं, तो ये तीन चीज़ों में से मैं इस वक्त क्यों पढ़ा रही हूँ, लिख लीजिए इस जुमले को। अगर मैं बातों को सुनकर, तारीफ को सुनकर, तनकीद को सुनकर, अच्छे कमेंट्स को सुनकर, बुरी बातों को सुनकर, छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करके देखते हुए मैं ये काम छोड़ देती हूँ, तो मान लीजिए कि मैं ये लोगों के लिए कर रही हूँ। दूसरी बात है अपनी थकन को देखकर, अपनी बीमारी को देखकर, अपने किसी जाती तकाजे को देखकर छोड़ देती हूँ, तो फिर ये मैं अपने लिए कर रही थी। लेकिन इन सारी बातों से ऊपर उठ के, हर हाल में तारीफ और तनकीद से ऊपर उठकर, दुनिया मुझे कुछ भी कह दे मैं कहूँगी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, तो इंशाल्लाह ये काम फिर इंदल्ला मकबूल होगा और अल्लाह ताला हमें अपना काम इसी मिशनरी जील के साथ करने वाला बना दे। लेकिन अंबिया कराम इतने जोश और जज्बे से चलते हैं कि हम 4 दिन एक काम करते हैं हमारा जोश ठंडा होता है, शौक फिर करेंगे ना चंद दिन में शौक पूरा होगा छोड़ देंगे, जोश में कोई काम करेंगे जोश ठंडा होगा छोड़ देंगे, होश में आते ही काम छूट जाता है। सिर्फ एक मोटिव ऐसा है जो इंसान को कंटिन्यूसली चलाता है, जैसे चार्जर पे लगा हुआ फोन कंटिन्यूसली 100 और 99 के बिटवीन आपको दिखेगा, और वो है अल्लाह ताला से कनेक्ट करने का चार्जर। और फिरौन ने कहा मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो, फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था पहले मैं अपनी बात सुना लूँ, हमारे यहाँ कहते नहीं नहीं जो पहले सुना ले ना वो सच्चा होता है, जो पहले खेल लेना इन पे वही टीम जीतती है, तो हक के अंदर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कोई एहसास कमतरी नहीं होता। सो जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह इसको भी दरहम भरहम किए देता है, अल्लाह ताला ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता, और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है, गोया के मुजरिम कैसा ही नागवार समझे, तो ये है हक की ताकत। जाइए आप सब सुना ले मैं इन पे बोलूंगा, आप सब खा लें, जो मेरे नसीब की बोटी पड़ी है वो पड़ी रहेगी, इससे इंसान का अकीदा भी दिखता है और इंसान की असल खुलती है। जब बड़े बड़ों ने झुठला दिया तो छोटों का हाल क्या था, जरा इसको देख लीजिएगा। पस मूसा अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील आदमी ईमान लाए, वो भी फिरौन से और अपने हुक्काम से डरते डरते कि कहीं इनको तकलीफ पहुंचाए, और वाकई में फिरौन इस मुल्क में बड़ा जोर रखता था, और ये भी बात थी कि वह हद से बाहर हो जाता था। कौन ईमान ला रहे हैं, छोटे छोटे लोग, जवान बच्चे, याद रखिएगा हर दौर में अंबिया कराम को मानने वालों में अक्सरियत यूथ की रही, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दलील हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो बिल्कुल शुरू दौर में मुसलमान हुए, हज़रत तलहा, हज़रत जाफ़र जवान थे, बाप मुसलमान नहीं हुए, बाप तो अल्लाह के नबी के दुश्मन बन के खड़े हो गए और जवान बेटे सामने आ गए, तो यूथ का यहाँ प्रेशर और यूथ की खूबसूरती भी दिखाई जा रही है, उसका कॉन्फिडेंस है। देखिए जवानी में बंदे को कुछ भी करना हो वो किसी से नहीं डरता, किसी की लड़की के साथ शादी करनी है वो कहेगा मैंने करनी है, घर से भगाना है भगा लेगा, तो जिस तरह जवानी में गुनाहों को हठधर्मी के साथ इंसान कर सकता है तो इसी तरह नेकी को भी कर सकता है, लिहाजा आपको मुझे अपनी जवान नस्लों के ऊपर नजरें रखनी है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। अपने बच्चों को अपने साथ मिलाइए, उनको साथ बिठाइए, उनको साथ खिलाइए पिलाइए, और उनके अंदर वो मोहब्बत डालिए दीन की जो मोहब्बत आपको भगा रही है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। देखिए कौम के बुरे रवैये के बावजूद या कौमी ये पुकार नहीं छुटी, तो क्या पता चला कि अल्लाह के रास्ते के काम करने वालों का अखलाक बड़ा आला होता है और ये होना चाहिए, लोगों के रवैयों के ताबे ना कीजिए कि कोई आपको बुरा कह दे तो आप भी उसके साथ चार सुनाने लग जाएं, और अच्छे लोग जो कहे उनके पीछे आप फिरते रहिए। जब आप सुनिए कौम का, नबी तो इतने प्यार और मोहब्बत से पुकारे, लेकिन कौमें अक्सर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती और उनका मामला कहीं और होता है। तो इसलिए फरमाया, उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया, ए हमारे परवरदिगार हमको इन जालिमों के लिए फितना न बना। यहाँ फितने से क्या मुराद है, नोट कीजिएगा, ला तजल न फितनतन। आप देखिए कि मुसलमान काफिरों के लिए दो तरह से फितना बनते हैं, एक तो यह कि मुसलमानों को कमजोर समझकर कुफार उन पर जुल्म करें, परसिक्यूशन करें, जैसे फिरौन ने बनी इसराइल पे की और मक्का में मुसलमानों पे हुई, जैसे उमैया ने बिलाल को परसिक्यूट किया। एक तो फितना ये होता है। दूसरा फितना बड़ा अहम है जो आज के दौर में देखने वाला है। क्या मुराद है कि मुसलमान अपने किरदार की पस्ती से इस्लाम से उनको दूर ना कर दें, यानी द बेस्ट बुक विद द वर्स्ट फॉलोअर्स ना बन जाए। जब मुसलमान कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, इस सूरत में कुफार के सामने फिरता है ना, तो वो भागते हैं, वो कहते हैं इनका सामना ना बने, हम इनसे दूर ही अच्छे। लेकिन जब मुसलमान के कौल और फेल में फर्क है, कुरान कुछ और है, मुसलमान कुछ और है, तो फिर बर्नेट रसल ने एक बुक लिखी थी द बेस्ट बुक विद द वर्स्ट फॉलोअर्स, उसमें लिखते हैं क्या आज हमें मुसलमान कुछ और दिखते हैं, किताब कुछ और दिखती है। और वो वाक्य भी आप सुन चुके हैं कि जब कुरान पाक बांटा गया वेस्ट में तो एक किताब वापस आ गई, कहने लगा मैंने तो इसको शुरू से आखिर तक पढ़ा, मुझे तो इसमें वो कुछ नहीं दिखा जो तुम मुसलमान आज करते हो, तो बराए मेहरबानी मुझे वो किताब दीजिए जिस पे अब आप अमल करते हैं। ये है फितना बनना। आज मुसलमान इस्लाम से लोगों को दूर कर रहे हैं। आज इस्लाम के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट, कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ी पावर, कोई बड़ी जमात, कोई बहुत वर्ल्ड वाइड दुनिया को चलाने वाले लोग नहीं हैं, आज हम मुसलमान हैं। या जब मुसलमानों की अपनी शर्मिंदगी अपने दीन से जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हम अपने कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते, हम अपने हाल हुलिये पे शर्मसार हैं, हमने डॉक्टर्स पे जाना है हमारा हुलिया बदल जाता, बच्चों के स्कूल में जाना है हुलिया बदलता, हाँ फिर शादियों और ईदों और फेस्टिवल और मेले ठेलों में भी जो पहन के जाते हैं वो भी कोई इस्लाम का अलंबरदार थोड़ी होता है, वो भी कल्चर के नाम पे होता है। तो लिहाजा ऐसी चीजों पे एक इंसान गौर करे तो आने वाली नस्लों को हम कितने फितनों से बचा सकते हैं, और हमको अपनी रहमत से काफिर लोगों से निजात दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो, और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो। क्या पता चला कि जब बाहर की दुनिया में अमल करना मुश्किल हो, नमाजें पढ़नी मुमकिन ना हो, तो घरों को किबले बना लो, हर घर मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सारी दुनिया में नमाज पढ़ी जा सकती है, क्योंकि पिछले मजाहिब में आप जानते होंगे कि सिर्फ अपने इबादत खाने में ही जाके इबादत की जा सकती थी, यानी चर्च या सैनिगॉग वगैरह में, लेकिन आपके और मेरे लिए तो नहीं है। लेकिन अब इससे ये आदत भी ना बन जाए कि जब बाहर पाबंदी ही ना हो तो भी आप घर में ही पढ़ते रहें। तो मुसलमान को अगर अमल करना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आज कई लोग वावेला कर रहे हैं, खाए लॉकडाउन में क्या करें ये, और जुमे के दिन एक एग्रेशन है और तरावियों पे शोरों और गुल मचा रहे हैं। बैठ कर सोचिए ऐसा क्यों हुआ, जब मस्जिदें खुली होती हैं फिर कितने जाते हैं। हो सकता है अल्लाह ने मस्जिदों की सुन ली कि जो नमाजियों का राह देखती रहती थी और लोग अपने मेले ठेलों में और खो जाते थे। तो लिहाजा इससे एक साइड का नुक्ता भी ले लीजिएगा कि जितना ज्यादा अमल करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए उतना अमल करना आसान रखेगा, और नमाज के पाबंद रहो, और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। इस्लाम बशारतों का दीन है, खुशखबरियों का दीन है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है, हमारे रब तूने फिरौन को और इसके सरदारों को सामान जीनत और तरह तरह के माल दुनियावी जिंदगी में दे दिए, ऐ हमारे रब इसी वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से गुमराह करें, ऐ हमारे रब इनके मालों को नीस्त तो नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, बस ईमान न लाएं जहां तक के दर्दनाक अजाब को देख लें। ये थी वो दुआ जिसके बाद फिर फिरौनी डूब गए। अल्लाह के नबी खास वक्त तक तबलीग करते हैं, जब देखा जाता है कि इन तिलों में अब तेल नहीं, इस जमीन से अब कुछ खेतियां उगने वाली नहीं, तो अल्लाह नबियों को हुक्म देते हैं कि अपने मानने वालों को लेकर निकल जाइए, ये हिजरत का वक्त होता है, और पीछे वालों को तबाह बर्बाद किया जाता है। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ क्या है कि तूने तो इनको इतनी दुनिया दी और ये इनको देख रहे हैं। आज भी देखिए कि कुफार के पास जब हम खूबसूरती देखते हैं, उनका हुस्न देखते हैं, उनकी नीली आंखें, उनके गोल्डन बाल, उनका पहनना ओढ़ना देखते हैं, तो कुछ मुसलमान और स्पेशली हमारे बच्चे जो इन लोगों में दिखते हैं वो कहते हैं बताइए क्यों, अगर ये खराब हैं, अगर अल्लाह इनको पसंद नहीं करता तो ये इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं। तो कितने ही मुसलमान आज भी इस्लाम से बदजन हो जाते हैं दूसरों की तरक्की को देखकर। तो अल्लाह ताला इसमें यही बता रहा है कि देखो, जब काफिरों की और दुश्मनों की और गैरों की तरक्कियों से अपने ही लोग बदगुमान होने लगे तो समझ लो कि इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, इनकी दुनिया में कुछ और दुनिया शामिल हो गई। आज सच बताइए, क्या हम अपने आप को कामयाब समझते हैं एक गैर के सामने? आज एक बिजनेस टूर पे जाने वाला ब्रीफ के साथ में लेकर, बड़ा खूबसूरत सूटकेस लेकर 10 दिन के लिए दुबई और न्यूयॉर्क और न्यूजीलैंड जाए, हम कहते हैं शौहर गए हैं जी। बड़ी खुशी से बेगमात बताती, बिजनेस टूर पे गए हैं, वो उनकी पीसी में मीटिंग है, वो उनको फलां सदर ने बुलाया और वहाँ वो भी शाही में आएंगे। और अगर कोई दीन के नाम पर, तबलीग के नाम पर सिर्फ 3 दिन के लिए चला जाए, फिर देखिए उस भाई को कितनी बातें सुननी पड़ती हैं कि हाँ हाँ बच्चों को छोड़ के तबलीग की पड़ी है। तो परसेप्शन तो हमारे खराब है, हमें गैरों का क्या चाहिए? एक बात शुरू से हम सुनते आए, यहाँ मुझे तो वही समझ आ रही है, आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या जरूरत? शायद आज का इस्लाम मुसलमानों को यही कहता होगा, अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। और इस्लाम को पीछे देखकर जब हम इस तरह की बातें सोचें तो इस्लाम को और इस्लाम देने वाले को नहीं, खुद को कोसें। हक ताला ने फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, बस तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह न चलना जिनको इल्म नहीं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। इसको कहते हैं ईमान गरगरा। अगला जवाब सुन लीजिए, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जवाब दिया गया, भी मान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में रहा, बस आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू तो इनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बात हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, डूबते वक्त फिरौन का ईमान कबूल क्यों ना किया गया? आज कुछ लोग इस पे भी बड़ा गुस्सा करते हैं, तो लिख लीजिए, मगफरत का वादा टाइम बाउंड है। जब मौत के आसार शुरू हो जाए, गरगरा की कैफियत हो जाए, या फिर सूरज मशरक की बजाय मगरिब की तरफ से निकल आए, तो अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये तो ऐसे ही कि पुलिस को देख कर चोर कहे, माफ़ कर दो, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, तो कौन जाने कि वो चोरी करेगा कि नहीं करेगा। और अल्लाह का ये वादा कि हम तेरी लाश को महफूज कर देंगे, आज भी कितना सच है। आज भी अगर आप फिरौन की लाश देखें तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने इतने साल पहले जो बात की वो कितनी सच हुई। 1898 में एलियट स्मिथ नाम के शख्स ने फिरौन की लाश को डिस्कवर किया था, फिर उसके मुख्तलिफ प्रोसेस किए गए और इस तरह के कुछ प्रोसेस पे गुजारा गया। 1975 में मोरिस बुकाई ने बताया कि इस शख्स की मौत शौक से हुई थी, उसकी बॉडी के ऊपर नमक लगा हुआ था तो पता चला कि ये बॉडी कुछ अरसा तक नमक के साथ यानी पानी में रही, समंदर की तरफ इशारा था। अल्लाह ने आज तक उसको इबरत बनाया, पर कितने लोग हैं जो उससे इबरत ले रहे हैं और कितने लोग हैं जो 100 पाउंड देकर उसको जाकर देखते हैं? आप इजिप्ट में चले जाइए, आज भी गली गली कोने कोने में आपको फिरौन की ममीज दिखेंगी। उन्होंने इसको कल्चर बना दिया, उन्होंने इसको टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की चीज़ बना दिया, और म्यूजियम्स में पूरी दुनिया में ये लाश घूमती है और इसको बड़े प्रोटोकॉल से ले जाते हैं। यानी सिर्फ कुरान है जो लोगों की असल दिखाता है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप कहीं नहीं देखेंगे कि फिरौन कौन था, यानी उसने अल्लाह के हदों को तोड़ा या क्या किया। तो लिहाजा इन आयतों को पढ़ते वक्त अपने इस कुरान की सच्चाई और अल्लाह ताला की बात का यकीन भी इंसान को आने लगता है। फिर फरमाया, हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने इनको पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया यहाँ तक कि इनके पास इल्म पहुँच गया। ये नोट कीजिए, इल्म से पहले लोग एक होते हैं, साथ खाते पीते, हम प्याला हम निवाला, पार्टियों में दावतों में खानों में सब एक है। जहाँ बात इल्म की दीन की आएगी एकदम झगड़े शुरू कर देंगे। यकीनी बात है कि आपका रब आपके दरमियान क़यामत के दिन इन उमूर में फैसला करेगा जिन पर वो इख्तलाफ करते थे, यानी जिसने नहीं मानना ना माने, एक दिन सब के सामने इकरार करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा कि हम ही जालिम थे। तो 75 से 93 आयात में हमने क्या देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आले फिरौन की कशमकश, हक कबूल करने में सबकत नौजवान करते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िबला खाना काबा ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आले फिरौन के खिलाफ दुआ और फिरौन का इबरतनाक अंजाम। अब यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को को बीच में लाया जा रहा है इन किस्सों को बताए जाने के बाद, फाइन कुन तफी शक में मंजलना इलाइक, फिर अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप इन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाएं। देखिए कहा अल्लाह के नबी को जा रहा है, लेकिन सुनाया मुशरिकी ने अरब और मक्का वालों को जा रहा है। शक करते थे, उनकी घुट्टी से शक निकलता ही नहीं था। जब ऐसी किस्से जो ना कभी उनके बड़ों ने सुने ना सुनाए, जब अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से सुनते थे तो फिर उनको मानना था, लेकिन क्या हुआ, मुमतरीन शक पैदा करते हैं। याद रखिए कि जब इल्म वालों की तरफ से शकूक और एतराज किए जाएं तो अवाम परेशान हो जाते हैं। जब भी कभी कहीं भी दीन की बात हुई और लोग उससे पहले के दीनदारों को देखेंगे, अगर वो कह दे हाँ ये अच्छा बंदा है, ये अच्छी बात कर रहा है, ये नई आवाज है लेकिन ठीक आवाज है, तो लोग उसको सुनना शुरू कर देंगे, उसकी मानना चाहेंगे। इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या होता है, जब पहले के दीनदार अपने हक में या अपने खिलाफ थ्रेट महसूस करते हुए या तासुब और शक रखते हुए कोई बात देख लीजिए, पता नहीं कौन है, पता नहीं कहाँ से पढ़ा, कहाँ बैठ के बातें हो रही हैं, आप सोच लें, मुंह से तो खुल के कोई भी नहीं कहता, तो लोग कहते ना 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 ये खराब ही होंगे। तो यही बात अल्लाह के नबी को पूरे कॉन्फिडेंस से कही जा रही कि आप लोगों के शकूक और एतराजात की बुनियाद पे अपने आप को पीछे न कीजिएगा, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ने आपको हक दिया, और नहीं लोगों में से हो जिन्होंने अल्लाह तला की आयतों को झुठलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान न लाएंगे। तसलियां दी जा रही हैं कि आप हक अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये नहीं मानते तो इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो इनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाएं जब तक वो दर्दनाक अजाब को ना देख लें। चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना इसको फायदा देता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनिया की जिंदगी में इन पर से टाल दिया और इनको एक खास वक्त तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। अल्लाह की तरफ से मौके आते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हक तो पहुंचा दिया था, बात नबी कभी छुपाते नहीं है, अधूरा दीन देकर निकल नहीं जाते बीच में कि बाकी किसी और से ले लो, माशरे से ले लो और खानदानों से ले लो, नहीं। लेकिन हुआ क्या कि हिजरत के हुक्म के मिलने से पहले निकल गए, थोड़ी सी जल्दबाजी थी, असल में अल्लाह ने इस कौम को भी तो चुनना था। वहां गए, कश्ती थी, कहा मैं तुम में नहीं रहता, जैसे पास वह माए बच्चों को कहती है मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तुम मुझे बहुत सताते हो, तो इस तरह की टोन जो होती है इसमें असल में गुस्सा भी होता है और जज्बात भी होती है। और याद रखिए कि इमोशनल बंदा जब गुस्से में आता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह के अंबिया कराम ऐसे तो नहीं थे, लेकिन कश्ती में बैठे बीच में गए, कश्ती भारी हुई, तूफान के आसार थे, मल्लाह ने कहा कि कश्ती का वजन हल्का करना पड़ेगा, कुर्रा डाल देते हैं, जिसका नाम आ गया उसको फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि उसकी वजह से बाकी बच जाए। बार बार कुर्रा डाला गया, आगे हम पढ़ेंगे, फसा का लफ्ज आता है तो बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता। उस दौर का एक रिवाज भी कहते हैं था कि जब कोई गुलाम मालिक से पूछे बगैर भाग जाता, क्योंकि उसकी कमोडिटी होता था, तो उस वक्त भी जरा सवारियां रुक जाती थीं, तो हजरत यूनुस समझ गए कि मैं अपने मालिक का हुक्म सुनने से पहले निकल आया हूँ। उन्होंने तो सबको बचाने के लिए कश्ती से छलांग लगाई, लेकिन अल्लाह ने उससे भी खूबसूरत एक वन यूनिट मछली उनके लिए रखी, और वो तो उधर थे, उसका जिक्र तो हम आगे पढ़ेंगे, खास तौर पर सूरत अल-अंबिया में, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन में। जैसे आज भी बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ताकि दूसरों को बीमारी के जरासीम न दें, तो कभी कभी जिंदगी में ऐसी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं जिसका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। पीछे कौम के साथ क्या हुआ, एक बात तो थी कि अल्लाह तआला हज़रत यूनुस की बात झूठी करते कि जी कोई अजाब नहीं आना, ये खामखा ये एडमिन की गलती है, ये इन्होंने कुछ ऐसा मैसेज कर दिया, नहीं, अल्लाह अपने बंदों को ऐसे जाया नहीं करता। अल्लाह ने फौरन अजाब के असरात बनाए, लगा कि अब जरा कुछ होने वाला है, दिल से तो वो हजरत यूनुस को मानते थे, आज भी लोग सच्चे लोगों को मानते हैं याद रखिए, लेकिन मानने देता नहीं है नफ्स। खैर अल्लाह ने असबाब तैयार किए, कौम समझ गई कि यूनुस जो कह गए होगा, और कौम पे अगर अजाब के असरात हों या नबी बददुआ दे जाए तो 3 दिन के अंदर अजाब आ जाता है। कौम को समझ आ गई वक्त से पहले, वो वहां से निकले, घरों के बुत तोड़े, जंगलों में गए, सजदा रेस हो गए, रो रो के माफिया मांगी। जू ही माफिया मांगी अल्लाह ने कहा अच्छा सीधे होते हो, ठीक है अब तो नहीं ऐसे करोगे, जैसे बच्चों को माइंड डराती हैं या बाप डराते हैं, हाँ हाँ नहीं अब अल्लाह माफ कर दे, चलो जाओ माफ किया। अजाब आना कोई भी नहीं था, अल्लाह ने देना ही नहीं था क्योंकि अभी वक्त नहीं आया, और अल्लाह को कोई मजबूर कर नहीं सकता। और इसी तरह से फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात भी सच हो गई और कौम भी झूठी ना पड़ी। आप कहेंगे इसके बाद क्या हुआ, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम वापस गए, और अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ तबलीग की, कुछ अर्सा गुजरा, वो सारा जिक्र आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह का फैसला सुन लीजिए। और अगर आपका रब चाहता तो रुए ज़मीन के लोग सब के सब ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं? नहीं कर सकते। तबलीग में आप सख्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि ला इकराह फिद दीन। हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, और अल्लाह ताला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। कभी इंसान सोचता नहीं को समझ क्यों नहीं आ रही, तो यही बात है। गंदगी किसकी है? देखिए, जिस्म की बीमारी अल्लाह के हाथ में है, किसी हद तक हम खुद भी उसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन दिल की सेहत या दिल की बीमारी इंसान के इख्तियार में। आप गंदी बातें सोचेंगे, आपका दिमाग गंदा हो जाएगा, आप अच्छी बातें सोचे होगा, यही बात जिस्म की आंखों कान हाथ साथ के साथ है। तो अच्छे काम करने वालों को अल्लाह ताला कभी भी गंदगी में नहीं डालते। आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या क्या चीज़ें आसमानों में हैं और ज़मीन में हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाते, इनको निशानी और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाती। सो वो लोग सिर्फ इन लोगों के सिवाकियात का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। आप फरमा दीजिए, अच्छा तो तुम इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। किस चीज़ का इंतज़ार कि देखो इंजाम किसका होता है? तो याद रखिए, हक और बातिल की जंग हो, मैच हो, कोई भी मैदान हो हक और बातिल के बीच का, उसमें फतह हमेशा हक वालों की होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि चले देखते हैं रिजल्ट क्या, तो रिजल्ट दुनिया में लिख लें, ठीक है। क्रिकेट मैच का रिजल्ट आपको नहीं पता कि कौन जीतेगा किधर जीतेगा, लेकिन हक की बात करने वाला दाई दीन हो या पैगंबर हो, आखिरी फतह उसी की होती है। इसीलिए फरमाया आयत 103 में, फिर हम अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते थे। इसी तरह हमारे जिम्मे है कि हम ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। अल्लाह हमें भी ईमान के साथ रखना और ईमान ही की बात के ऊपर जमा दे। और ये अल्लाह की सुन्नत आपको कल भी दिखती थी, आज भी दिखेगी, शर्त यह कि ईमान उस दर्जे का हो। आप कह दीजिए, ऐ लोगो, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। दूसरे लफ्जों में आपने कहा मैं पीयर प्रेशर में नहीं आता, हम आ जाते हैं। अच्छा, सब करें तो ठीक ही तो होगा ना, अब सारी फैमिली है, अगर एक रस्म है, अगर आपको शक लग रहा है कि इसमें शिर्क है, कुछ ऐसी खराबी, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी साहब, सॉरी, आई कैंट एक्सेप्ट योर दिस इनविटेशन, लेकिन हाँ, इस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज करता है, और मुझको ये हुक्म हुआ कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। ये कॉन्फिडेंस चाहिए आज के मुसलमान को भी बातिल नजरियात, बातिल रस्म व रिवाज के खिलाफ। और ये कि अपना रुख यकसू होकर इस दीन की तरफ कर लेना और कभी मुशरिकों में से ना हो, और अल्लाह को छोड़कर इस चीज की इबादत मत करना जो तुझको ना नफा पहुंचा सके और ना कोई जरर पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया गया तो तुम इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे। और आगे अकीदे की खूबसूरती की बात, खात्मा सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी सूरत में हमने देखा कैसे अम्बिया कराम की दावत, लेकिन कौमों के रवैये, और अब क्या फरमाया, वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा। और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो सिवाय इसके और कोई इसको दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो इसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ी मग़फ़रत वाला और बड़ी रहमत वाला है। अकीदे तौहीद है। याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में लग जाता है ना, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। आप किसी के बच्चे को देखने लग जाएं तो वो आपसे कहेगा, अच्छा फिर मैं आपके लिए खाना बनाऊं, क्या खाएंगे, चाय बनाऊं। जो अल्लाह के दीन को सर्व करने लग जाते हैं ना, अल्लाह उनके कामों को अपने काम बना लेता है। इसलिए पूरे शरह सदर के साथ ये दुआ मांगिए इस रमजान में कि मालिक हमें अपने दीन के लिए चुन ले, और फिर देना तो सब एंड पे उसी ने है, हम किधर जाएंगे। तो फरमाया, आप कह दीजिए, कुल या यूहन्नास, आप कह दीजिए, ऐ लोगो, तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका है। किसको कहा जा रहा है? मुझे और आपको कहा जा रहा है। 10 पारे पूरे हो गए, 11वां पूरा होने लगा, बात उर्दू में समझ आ गई, अपनी अपनी जुबान को समझने वालों, हक आ गया है। इसलिए जो शख्स राह रास्त पर आ जाए, बस वो अपने वास्ते राह रास्त पर आएगा, और जो शख्स बेराह रहेगा, इसका बेराह होना इसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। वमाना अलैकुम बी वकील। करो क्या? आखिरी आयत देखिए, ऐसा लग रहा है कि चीनी की चम्मच है। वत्तबी मा यूहा इलैक, आप इसकी पैरवी करते रहिए जो आपके पास वही भेजी जाती है। वसबिर, और सबर कीजिए। हत्ता याहकुम अल्लाह वहुवा खैरुल हाकिमीन, यहाँ तक अल्लाह फैसला कर दे और वह सब फैसला करने वालों में अच्छा है। दाई दीन को अल्लाह की तरफ से यही पैगाम है, आज भी लोग माने ना माने आप तो मानिए और फिर इंतज़ार कीजिए, फिर जजमेंटल ना हो, बात ना बढ़े, बस। तो एक नबी के नाम पे सूरत पूरी होती है यूनुस और एक दूसरे नबी के नाम पे शुरू होती है हूद। आप गिनते जाइएगा, मैं नहीं बताना चाह रही, आप खुद ढूंढेंगे कि कितनी सूरतें हैं कुरान पाक में अम्बिया कराम के नाम पे और उसमें एक सूरत हूद है। आप सोचेंगे ये तो कितने फेमस नबी भी नहीं है, तो आप देखिए कौम यूनस के साथ एक यूनिक मामला हुआ ना, तो सूरत यूनस नाम आ गया उसका, वल्लाहु आलम। लेकिन ये गौर व फिक्र के बाद मुफस्सरीन की जो सोच होती है वही हमारे सामने आती है। अब हजरत हूद का जिक्र क्यों आ गया, तो आपने इस सूरत में से हजरत हूद का किरदार और उनकी कौम के मामलात को देखना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताब उनुहकिमत आयातुहू सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। हरूफ मुकद्दात के बाद क्या फरमाया, ये कैसी किताब है, इसकी आयतें मुहकम की गई, यानी हुक्मी आयतें हैं, मजबूत हैं, जमी हुई हैं, ठुकी हुई हैं, कोई हैंकी पैंकी बातें नहीं। ये बहुत स्ट्रांग नॉलेज है जो आप और मैं ले रहे हैं, इसको हल्का ना जानिए। दुनिया की किसी मास्टर्स की डिग्री, रेंगुलर की डिग्री, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री वो इस किताब का मुकाबला कर नहीं सकती। फिर साफ साफ बयान की गई है एक हकीम बाखबर की तरफ से ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। क्या खूबसूरत पैगाम है। देखिए हर नबी की दावत में आप यही चीज़ देखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दावत दे रहे हैं, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। आगे हर नबी का किस्सा भी इसी में आएगा और ख़ास तौर पर आप देखेंगे सूरत हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत है, यानी उनकी ज़िंदगी के वाक़या तरतीबे ज़मानी के साथ होते हुए दिखते हैं। यहाँ ज़रा लफ्ज़ बंदगी को समझ लीजिए, फिर आपने हर कौम के रवैये में इसको देखना है। देखिए बंदगी के तीन दर्जे होते हैं। पहला दर्जा क्या होता है कि अल्लाह की इबादत करना शुक्र के जज्बे के साथ। मसलन आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने मुझे नमाज की तौफीक दी। आप खुशी खुशी रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह ताला आपने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तभी तो रोज़ा रख रही हूँ। ये पहला दर्जा होता है। फिर इसके दूसरे दर्जे पे जब आप पहुँचते हैं तो अबदियत होती है इसमें, वो क्या है, इन इबादतों को करना और ख़ुद को ग़ुलाम समझना, यानी इसमें आजजी होती है। आप अकड़ते नहीं अपनी नमाजों पर और आप अपने रोज़ों को दूसरों के लिए मुश्किल नहीं बनाते, यानी इबादत के अंदर अबदियत का रंग आ जाए कि फिर अकड़ नहीं। बस आप देखिए कि शौहर बीवी को कहता है चाय का कप ला दीजिए, एक तो है कि वो उठी और ला कर चाय का कप बड़े सलीके से तहजीब के साथ पेश कर दिया, नैपकिन भी रख दिया, साथ बिस्किट भी रख दिए, स्माइल भी दे दी। ये है वो इबादत, बंदगी के खुशी के साथ भी की, शुक्र का जज्बा भी था और फिर उसके बाद आजिज भी रही। और दूसरी सूरत आप खुद ही समझ गए होंगे कि चाय क्या बुड़बुड़ भी करते रहे, क्या मसला है, आप घर बैठे हैं, मैं 6 कप तो सुबह के बना चुकी और पहले तो मेहमान आते थे, अब आप ही घर में मेहमान बने बैठे हैं और धड़म से ला के कप रखा, थोड़े से चाय के कतरे बाहर भी गिर गए। तो ये कह लीजिए कि ये बस वही है जो कभी कभी हमसे हो जाता है और इसको नहीं करना, इसमें अब्दियत नहीं होती। जब इंसान इस दर्जे पे आ जाता है ना, फिर बंदगी का तीसरा दर्जा शुरू होता है जिसको अबूदियत कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं बंदगी यानी इबादत से शुरू होती है, बीच में अबदियत आ जाती है और फिर अबूदियत है। और वो क्या है, इबादत का जो आखिरी मकसद है वो हासिल हो जाए। मसलन नमाज से फुहश से नफरत हो जाए, इन्न सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह आगे जाकर। इसी तरह रोजा क्यों रखा, लअल्लकुम तत्तकून। तो इस तरह से फिर इंसान बिल्कुल चलता फिरता उस इबादत का सिंबल बन जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इबादत के ये सारे दर्जे अता फरमाए। बहुत सारे लोग हैं वो अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं कि हम किस दर्जे की बंदगी करते हैं। दूसरा पैगाम अम्बिया कराम का, अवानिस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ फिर इसकी तरफ मुतवज्जे हो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान्य जिंदगी देगा और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग झुटलाते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा। दावत का दूसरा कंपोनेंट तौबा, और तीसरा देख लीजिए क्यामत के दिन की पकड़ का एहसास, यानी अकीदे आख्तर अकीदे आखरत, ये है वो बड़ी खूबसूरत दावत देने की तरतीब जो आज भी मैंने आपने लोगों के साथ इख्तियार करनी है। पहले उनको अल्लाह का बंदा बनाइए, रब से जोड़िए, फिर उनको आजजी सिखाइए, और फिर उसके बाद आखरत की पकड़। इसके बाद फिर शराब, कबाब और सूद और रिश्वत और बड़ी बड़ी बातें कीजिए तो लोगों के नफ्स पे बोझल पड़ती हैं। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है, वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। याद रखो, वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं, वो इस वक्त भी सब जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातें भी जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर। कितने खूबसूरत नुक्ते पे पारा पूरा हुआ कि दिलों पे अल्लाह की निगाह है, उसको साफ रखो, पाक रखो। दूसरों के सामने तो बहुत नहा धो के साफ सुथरे बन के बैठ जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला की नजरों में अपने आप को बड़ा समझो। तो ये था पारा नंबर 11। चंद जेम्स ले लीजिए, गोल्डन वर्ड, सुनहरे हरूफ। पहली बात क्या है कि कुरान और ईमान सलासा, इस बारे में बहुत सीखा हमने, उजर बहाने नहीं करने। और जो लोग उजर करते हैं वो पास तो हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं जन्नत के किसी हिस्से में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो जन्नत के VIPs नहीं होंगे, फर्स्ट क्लास उनको टिकट नहीं मिलेगा। फिर हमारा हदफ क्या होना चाहिए? साबिकून अल अव्वलून बनिए। और अल्लाह का कुर्ब कुर्बानियों और जिहाद से मिलता है, इसको तो बड़ा बड़ा लिख लें। अल्लाह का कुर्ब कुर्बानियों से मिलेगा और दीन के लिए जिद्दोजहद से मिलेगा। निफाक को दूर करने के लिए इन्फाक करना पड़ेगा और कज़ा कदर पे राजी रहना पड़ेगा। इसके बगैर आपको मुझे सच्ची खुशियाँ नहीं मिल सकती। फितना इस पारे का था उजर बहाने, अल्लाह के रस्तों से रुकने के बहाने, और इसी तरह की कहानियां और इसी तरह की बातें। तो इसका हल भी ले लीजिए, और वो क्या है कि आपको मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे, और ये वो काम होंगे कि जिनको करने के बाद आपकी मेरी जिंदगी में कुछ चीजें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि सल्यूशन क्या है, क्योंकि डॉक्टर बीमारी सारी सुन ले, बात सुन ले, लेकिन दवा ना दे और मरीज दवा खाए ना, तो बीमारी सेहत में नहीं बदलती। तो हर फितना एक बीमारी है, और हर फितने से बचने के लिए आपको मुझे जो करना है उसमें आपकी मदद कर देते हैं। नोट कीजिएगा, फितनों से बचने का रास्ता, नेकी की राह में अपने उजर और बहाने तलाश करके इनको दूर करना है। जोर से कहिए इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आपके लिए ये रमज़ान एक वाकई गिफ्ट होगा जो अल्लाह ताला ने आपको मुझे दिया। इस बात का यकीन रखना है कि अल्लाह आलिमुल गैब है और इसको हमारे उजर और बहाने पता हैं, यानी बंदों की नज़रों में सच्चे हो जाएंगे लेकिन महरूम खुद ही रहेंगे। पिछली ज़िंदगी में नेकी के मौके छोड़ने पर तौबा इस्तिग़फ़ार और आइंदा के लिए हिदायत और इस्तकामत फिर दीन की दुआ करनी है। दिल तो जा रहा है 10 मिनट दे दूँ आपको इन दुआओं के मांगने के लिए, लेकिन इसको बाद के लिए रख लीजिए। नमाज जो भी आएगी इसके बाद, उसके बाद दिल से आज रो रो के दुआ मांगे, मैं भी और आप भी। क्यों मैं बार बार पीछे रह जाती हूँ? मुझे क्या मसला है? मेरा नसीब अच्छा नहीं क्या कि अल्लाह मुझसे अपने काम मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कराना चाहता? ये क्या इधर उधर भटकती फिरती हूँ? मुझे तो अब MA कर लेना था और मैं अभी मैट्रिक में घुसी पड़ी हूँ। इस तरह से ना अपनी आप को अल्लाह तआला के सामने बिछाइए, अल्लाह ताला आपका दिल शायद आज ही खोल दे और फरिश्तों को कह दे कि बस सब इसको मेरी बंदी बना दो। फिर इसी तरह बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है, हर वो काम करना है जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो और दीन इस्लाम को मदद मिले। कितने आसान हल हैं। इसके लिए तो आपको किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत भी नहीं, ये सिर्फ बिटवीन यू एंड योर रब, मैं और मेरा रब, किसी तीसरे को कहने पूछने बताने की ज़रूरत भी नहीं। फिर इसी तरह साबिकून अल अव्वलून बनने के लिए नेकी के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देना। हर नेकी के काम की तैयारी पहले से करनी है ताकि पीछे रहने और पछताने वालों में से ना हो। हर बुरी आदत छोड़नी है, दीन पर इस्तकामत इख्तियार करनी है और अंसार बनकर दूसरों की मदद करनी है, और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए कुर्बानियों और जान माल से जिहाद करना है। निफाक को दूर करने के लिए मोहब्बत और इखलास के साथ इनफाक फी सबीलिल्लाह करना है। बस ये कलिफ याद रखिएगा जो निफाक को इनफाक से अलग करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है, ये जानकर अपनी सोच में तब्दीली लानी है कि उजर और बहाने बनाकर अपने आप को हिदायत के रास्ते से दूर करना दरअसल खुद पर जुल्म करना है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, काम हो जाते हैं, पहले से भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हम महरूम रह जाते हैं। इस बात का यकीन रखना कि उज़र और बहाने गैर संजीदा रवैये की अलामत हैं, जिसका नतीजा रोज़ क़यामत पछतावे के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए इस नेमत को। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। बड़े शऊर से ये जुमला बोलती हूँ, आप भी इसको अपने लिए मांगा करें। बेशक तो खूब सुनने और खूब जानने वाला, हम पर रहमत और मगफरत की नज़र फरमा। बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। चुपके चुपके दुआएं करते हुए अगला पारा खोल लीजिए, क्योंकि आप अल्लाह से जो मांगेंगे और इतना प्यारा काम करने के दौरान, तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको वो अता न करे। अगले पारे के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या खजाने रखे हुए हैं। और हकीकत है कि अल्लाह का कुरान जेम बॉक्स है, अगर हम इस पे गौर व फिक्र कर लें। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा वला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला की तौफीक से दौरे कुरान 2020 शुरू करेंगे। पारा नंबर 12, वमा मिन दाबतिन। सूरत हूद की आयत नंबर 6 से ये पारा शुरू होता है, जिसका पहला ही जुमला क्या है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा नहीं कि उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। इसी पर ये बात शुरू की जाएगी कि रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया, तुम इसको अपने हाथ में ना लो। और इसके अलावा अल्लाह ने जिस काम का ज़िम्मा तुम्हें दिया वो काम करो। अफसोस की बात है कि आज हम इसके बिल्कुल उलट तर्ज़े ज़िंदगी का शिकार हो गए। तो इस पारे का मौजू फितनों के मौजूआत में से है, गुनाहों का फितना। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या कभी हमने गुनाह को फितना समझा, आजमाइश समझा? गुनाह बमुकाबिल करोना, वो फितना है कि ये फितना है, वो आजमाइश है कि ये आजमाइश है। तो याद रखिए कि गुनाह की हैसियत ऐसे ही है जैसे जिस्म में एक सेल का निज़ाम बदले और कैंसर शुरू हो जाए। मैं लफ्ज़ गुनाह को हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए जो मिसाल देती हूँ वो कैंसर की देती हूँ। आपने थोड़ा बहुत तो ज़रूर इस पे पढ़ा ही होगा, और जो माशाल्लाह मेडिकल के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं उनको भी इसका बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जिस्म बिल्कुल आम अपनी हरकत पे आता है, लेकिन किसी एक सेल का, जिसको यानी ये हमारी साइंस टीचर ने जो जुमला बोला था मुझे वही याद आ जाता है कि किसी एक सेल का दिमाग ख़राब हो जाता है, उसकी ग्रोथ रैंडम हो जाती है। यानी उसको सेम ग्रोथ तो ऐसी होती है ना, जैसे अब आप देखिए कि आपका मेरा हाथ बचपन में छोटा था, अब बड़ा हो रहा है, तो फिर बड़ा होके एक जगह के रुक गया ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हाथ को बड़ा होना था तो एक पूरे अच्छे तरीके से होना था, लेकिन बिलफर्ज अगर आपके हाथ पे कोई एक जगह गिल्टी सी बनने लगे तो ये ग्रोथ तो नहीं है ना। तो कैंसर, ट्यूमर या गिल्टी कैसे होता है या कैसे बनता है? जब गलत किस्म की ग्रोथ होती है। ये जो कैंसर है ना, इसी तरह वो गिल्टी की शक्ल में जब बदलता है ना, तो इर्द गिर्द के सेल्स की एनर्जी उसमें जाती है। नुकसान क्या होता है कि वो सेल कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और ये ट्यूमर बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और जब ये बड़ी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता भी पूरे जिस्म का खून इसमें आने लगता है, और दूसरी चीज़ें जो कुछ होती हैं वो बाद में सीखेगा। यहाँ लिखिए, गुनाह बिल मुकाबिल कैंसर। जिस तरह कैंसर का शुरू में नहीं पता चलता और लगता नहीं कि कोई बीमारी है, हर चीज़ नॉर्मल लगती है, आम तौर पे आपने सुना होगा कि ये एंड पे पता चलता है, गुनाह भी ये कैंसर है। गुनाहों का फितना जब फैलता है तो ज़िंदगी से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का खून खिंच जाता है, तकवा भी खिंच जाता है, और इंसान के अंदर अपनी इसलाह की फिक्र नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह गुनाह एक दाग और धब्बे की तरह भी है जो किसी सफ़ेद कपड़े पर लगा, और अगर आप उसको फ़ौरन दूर नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद करेंगे तो मुश्किल से धुलेगा, और फिर अगर एक दो दिन वो कपड़ा पड़ा ही रहे तो हो सकता है उसको फिर सर्फ के बाद ब्लीच भी करना पड़े और उसके बाद उसको भट्टी में पकाना पड़े। तो गुना आपकी मेरी बहुत बड़ी आजमाइश है। क़यामत के दिन ऐसे ही लोगों को पुल सरात से गुजार कर बल्कि जहन्नुम के डुबकियाँ दिलाई जाएंगी कि जिनके ऊपर कुछ गुनाहों के धब्बे रह जाएंगे। इस पर एक लेक्चर है, एक से ज़ायद दफ़ा डिलीवर हुआ सेम इसी मौजू पे कि गुनाह कैसे धुलते हैं और कैसे धुलाए जाएं। अगर उसका लिंक आपको मिल जाए तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इस पारे पे चलते हैं कि इस पारे में किस किस गुनाह को हम देखेंगे। सबसे पहला फितना या गुनाह जो इंसानों से सरजद होता है वो पहली ही आयत में है कि लाल अल्लाह ही रिस्कुहा, रिस्क को अपने जिम्मे लेने का फितना, ये गुनाह है आज। तभी तो मर्दों बेचारों को वक्त नहीं मिलता और बेटे पढ़ते हैं कि पढ़ेंगे नहीं तो कैरियर नहीं बनेगा, तो शादी कैसे होगी, तो कमाएंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसका तो हमारे अकीदे से भी टकराव है। फिर इसके बाद आप और मैं मुख्तलिफ अकवाम का किस्सा पढ़ने वाले हैं। मसलन कौम नूह का फितना देखेंगे, शिर्क था, पिसरे नूह बाप के सामने डूब गया कुफर के गुनाह की वजह से। फिर कौम आद की किस्से कहानियां हैं कि कौम आद के गुनाह क्या थे, नबियों के सामने मुमारी करना, सरकशी करना। फिर हम इसमें कौम समूद के गुनाह को देखेंगे कि कैसे वो अल्लाह के नबी की बात को पीछे डालते हुए नजर आते हैं और अल्लाह की तरफ से आई हुई एक निशानी की नाकदरी करते हैं। फिर हम इसमें कौम समूद के गुनाह यानी मोजज़े की नाकदरी को भी देखेंगे। फिर कौम शुएब के गुनाह को देखेंगे कि नाप तौल में कैसे कमी करते थे, थोड़ी सी चीज़ बचाई, डंडी मारी, लेकिन अल्लाह ने उनको कहाँ से उठाकर कहाँ फेंक दिया। इसी तरह बास दफ़ा हम बहुत मामूली समझ के गुनाह करते हैं लेकिन क़यामत के दिन वो हमारा रिजल्ट बदल देंगे। बिल्कुल ऐसी मिसाल ले लीजिए एक छोटी सी जैम कि एक दो नंबर के फ़र्क से फर्स्ट पोजीशन से इंसान सेकंड पे आ जाए, या एक दो नंबर के फ़र्क से पास होने की बजाय फेल हो जाए और उसको एक साल और लगाना पड़े। तो ज़िंदगी में किसी गुनाह को अपने लिए हल्का ना समझिए। फिर इसी तरह हम अख़वाने यूसुफ का गुनाह देखेंगे जो हसद की सूरत में दिखेगा। ये हसद इतनी बुरी बुराई है कि अपने खून के रिश्तों ही के खिलाफ इंसान को खड़ा कर देता है। फिर इसी तरह नमाज को बेवक्त पढ़ने का गुनाह देखेंगे क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि नमाज को अल्लाह ने उसके वक्त पे मुकर्रर कर दिया। फिर इसी तरह हम सूरत यूसुफ में देखेंगे कि अजीज़े मिस्र का एक गुनाह था कि उसने बीवी की बुराई को जान लिया लेकिन इसके बावजूद उसकी बेजा हमायत की। फिर इसी तरह इमरातुल अजीज का गुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीड्यूस करना यानी गुनाह की दावत देना। फिर इसके बाद बेगमाते मिस्र, औरतों के फितनों पे भी कदरे डिटेल से बात होगी अगर वक्त ने गुंजाइश दी। फिर इसी तरह कैदी का गुनाह क्या था, दोनों में से एक ने बादशाह को जहर देने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के गुनाहों को देखते जाएंगे और शिर्क जैसा गुनाह जिसको जुर्म अजीम कहा गया उसका भी जिक्र इस बारे में आएगा, और कौम लूत के गुनाह, होमोसेक्सुअलिटी पे भी इस बारे में बात होगी। हम जिंस परस्ती का गुनाह आज उम्मत मुस्लिमा की जवान नस्लों पे प्लेग की तरह छाया जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि पूरे प्लान के साथ, एजेंडे के साथ आज लोगों को इस खिलाफ अकल खिलाफ फितरत काम के लिए तैयार किया जा रहा है और फिर अल्लाह की हदूद से निकलने के गुनाहों को तो हम देखेंगे। ज़रा सा एक माइंड सेट कीजिए, ये गुनाहों का फितना हम पे मुसल्लत क्यों होता है? तो नंबर एक, बुरा माहौल, बुरे दोस्त। इसका सिंबल हम पढ़ेंगे इस बारे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा, चार में से एक बेटा बिगड़ गया, वजह बुरा माहौल थी। फिर दूसरी बहुत बड़ी वजह होती है नज़रियात, अकायद और किरदार की खराबियां, यानी या तो नज़रियात बिगड़ जाते हैं या अकीदा खराब होता है या किरदार खराब हो जाता है, और इसको भी हम देखेंगे अम्बिया किराम की कौमों में से। फिर इसी तरह बुरे आमाल गुनाहों का जरिया बनते हैं, वो कौन सी बुराई है आप इस बारे में से नोट कीजिए। अगर आज आपको मैं काम दे दूँ ना और आप खुशी से कर लें, इस बारे में जहाँ भी किसी भी गुनाह का जिक्र है यानी वो अकीदे का गुनाह है, वो इबादत का, मामलात का, अखलाकियात का, उसको हाईलाइट करते जाएं अपने मुसहफ में, तो आप देखेंगे कि एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी बाद में इंशाल्लाह। फिर इसी तरह गुमराही और बुरे नतायज क्या निकलते हैं। पारे की मरकजी आयत यानी थीम आया कौन सी है, आयत नंबर 23 सूरत हूद, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वहबतू इला रब्बिहिम उलाइका असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून मसलुल फरीकैन कल आमा वल असम वल असम वल बसीर वस्समी हल यस्तवी यानी मसला अफला तज़क्करून। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए रब ने परवरदिगार के आगे आजजी की, यही साहिबे जन्नत है और हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फिरकों यानी काफिर और मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता हो, भला दोनों का हाल यकसां कैसे हो सकता है? फिर आखिर तुम सोचते क्यों नहीं? तो इस आयत में आपको जो बात समझ आएगी कि ईमान का कलमा पढ़ने के बाद, ईमान का दावा करने के बाद तस्बीह लेकर हाथ में नहीं बैठ जाना, जंगलों में नहीं चलना कि जन्नत मिल जाएगी, बल्कि अमल सालेहात करना पड़ेगा। और अमल सालेह वही होते जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया, वख्बतु इला रब्बिहिम, फिर बुझना पड़ेगा, अल्लाह के आगे आजिज़ होना पड़ेगा। और जो बंदा इस दर्जे पे जिंदगी बसर करेगा, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देगा। और हकीकत है कि यहाँ मुशरिक को आमा असम कहा गया। एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम का फर्क ऐसे ही है जैसे किसी की आंखों पे आप हाथ रख दें, कानों में उंगलियां डाल दें तो घुटन का एहसास होता है। इसके बरक्स आप खुली आंखों से देखते हैं, दुनिया को सुनते हैं, बिल्कुल फ्रेश जैसे ऐसे महसूस कर रहे हैं, तो क्या एक वुस्सत कल्बी और वुस्सत नजरी की मिसाल नहीं? तो यहाँ फर्क बताया गया कि गुनाहों वाली जिंदगी बसर कर देना, चाहे आखिरी गुनाह उसमें कुफर और शिर्क तक पहुंच जाए, और नेकियां वाली जिंदगी बसर कर देना कि अल्लाह के हुकूक के साथ साथ बंदों के भी अदा करने वाला। तो ये दो मुख्तलिफ किरदार हैं। तो गुनाह के साथ जीना और एहसास भी ना होना, और नेकियों के साथ जीना और बहुत ही ज्यादा डर के साथ जीना, ये है बुनियादी फर्क जो हम इस बारे में देखेंगे। और अल्लाह से दुआ मांगेंगे अपने गुनाहों की मगफरत की। अल्लाहुम्मा अग्फिर लिमा कद्दमतु वमा अख्खरतु वमा असररतु वमा अलनतु वमा अंता अलमु बिही मिन्नी अंतल मुकद्दिमु वल मुअख्खिरु वअंता अला कुल्ली शयइन कदीर। ए अल्लाह, आप तड़प के देखिए, किसी को गम लगा हो ना जब, तो दिल से दुआएं निकलती हैं। तो गुनाहों का गम लगाना, इस बारे में आपका मेरा काम ही है, अपने दिल को अपने गुनाहों का गम लगा लें। जहां कोई गुनाह आपने देखा, अपना छोटा है बड़ा है, शौरी है गैर शौरी है, नहीं मान लीजिए कैंसर का सेल अंदर चला गया, अब गड़बड़ शुरू होगी, देखना डिले कर दूंगी ना, तो वही बात है कि गाइडेंस डिलेट, गाइडेंस डिनाइड, फिर एक्सेस भी खत्म हो जाता है। तो आपको मुझे अपने गुनाहों को सामने रख के अल्लाह के आगे बिछ के दुआ करनी है, और इस वक्त भी दुआ ही की नहीं ऐसे मांगिए कि आप अल्लाह के इतने प्यारे महीने में रोजे की हालत में हैं या जिस तरह भी हैं और इस कुरान को सीख रहे हैं, इससे प्यारा वक्त कौन सा होगा दुआओं की कबूलियत का? हे अल्लाह, मेरी मगफरत कर इन कामों में जो मैं कर चुका हूँ और इन्हें जो करूंगा, और जिन्हें मैंने छुपाया और जिन्हें मैंने जाहिर किया। सोचिए कहाँ जाहिर करते हैं हम, तो अपने प्रोफाइल्स पे और आप पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाते हैं अपनी, देखो मैं कल रात यहाँ था, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने ये पहना और मैंने ये चिल किया। अल्लाह जाहिर ना करे तो अपने गुनाहों को जाहिर नहीं करना। तू सबसे पहले है और तू ही सबके बाद में है, और तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह हमारे सारे जाहरी बातनी गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह, इस रमजान में तो बिल्कुल ऐसे पाक कर दे जैसे साफ कपड़ा होता है, और निजात का साल बनाना इसको, कि अल्लाह बस इस साल हमारी निजात कर दे। हदीस इस मौजू से मुतल्लिक सही मुस्लिम की 6986, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से रिवायत किया, यानी अल्लाह ताला से रिवायत मुराद है कि हदीस कुदसी है। अब आप इसको विजुलाइज कीजिए, अपने ऊपर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आंखों के अंदर एक नक्शे की सूरत में जम जाती है ना, फिर उसकी तासीर बहुत देर तक रहती है। एक बंदे ने गुनाह किया और कहा कि या अल्लाह मेरा गुनाह बख्श दे। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया, वो जानता है कि इसका एक मालिक है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआवजा करता है। फिर इसने गुनाह किया और कहा, ए मालिक मेरे, मेरा गुनाह बख्श दे। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे बंदे ने एक गुनाह किया और वो जानता है कि इसका एक रब है जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर मुआवजा करता है। फिर इसने गुनाह किया और कहा, ए पालने वाले मेरे, मेरा गुनाह बख्श दे। परवरदिगार ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया और वो ये जानता है कि इसका एक परवरदिगार जो गुनाह बख्शता है और गुनाह पर पकड़ता है। ए बंदे, अब तू जो चाहे अमल कर, मैंने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इसका ये मतलब नहीं कि गुनाह करते जाएं और ये लाड करते जाएं। लाड का भी बच्चे का एक वक्त ही होता है, उसके बाद फिर गुस्सा माँ बाप को भी आ जाता है। लेकिन याद रखिए, आपका रब बिल्कुल तैयार है आपके हर गुनाह को मिटाने के लिए, शर्त यह कि आप तैयार हो गए। तो आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस पारे के दौरान ही अपने गुनाहों से ऐसे बेजार कर दे जैसे कोई नापसंदीदा चीज़ से बेजार होता है। पारे की हाइलाइट्स लेते हैं, झलकियाँ, क्या कुछ सीखेंगे इसमें। अल्लाह और आखरत पर ईमान लाना, तकवा और अल्लाह की रज़ा पर ज़िंदगी की बुनियाद रखना, जन्नत का सौदा करना, दीन की समझ पैदा करना और अपनी कौम को खबरदार करना, मुनज़िर का किरदार अदा करना, दूसरों की भलाई का हरीस होना, यानी सारे अंबिया कराम की ये मुत्तफिका सिफात थी। और इसी तरह मोमिनों पर शफकत और मेहरबानी करना और अल्लाह की आयतों का इल्म हासिल करना, अल्लाह ताला के लिए खालिस करना खुद को, और इसी तरह से बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पर अमल करने की तौफीक दे। चलिए शुरू करते हैं सूरत हूद की आयत नंबर 6 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين। ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने भी जानदार हैं सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला पर हैं, वही इनके रहने सहने की जगह को जानता है और इनके सौंपने की जगह को भी, सब कुछ वाज़ह किताब में मौजूद है। दो लफ्ज़ हैं, मुस्तकर और मुस्तौदियोहा। मुस्तकर कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी को, पक्का ठिकाना, और मुस्तौदियोहा कहते हैं टेम्परेरी को। दुनिया क्या है? मुस्तौदिय है, वक्ती तौर पे अल्लाह ने आपको मुझे यहाँ रखा। इसी तरह कब्र भी मुस्तौदिय है, क्योंकि वहाँ भी ख़ास वक्त के लिए रखा जाता है। तो फिर परमानेंट ठिकाना क्या है? वो जो हकीकत में हमारी आखिरी आरामगाह होगी। अगर अल्लाह के यहाँ जन्नत मिल गई तो वही तुम्हारी और हमारी आखिरी आरामगाह होगी। दुआ कीजिए मुस्तकर अच्छा हो। लोग कहते किराए का घर है, गुजारा कर ले, अपना बना रहे हैं उसको ठीक कर लेंगे। दूसरी बात देखिए कि इसमें है इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा, रिस्क को अल्लाह की अता समझना। किसी ने कहा कि अल्लाह को भूल गए लोग, फिक्रे रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। तो हमारा मकसद हयात रिस्क कमाना नहीं, ये बात बाप भी समझ लें और बच्चे भी समझ लें। फ़र्क क्या पड़ता है ज़रा सा देखिएगा। रिस्क को अपने ज़िम्मे लेने का फितना, फितनों और ख़राबियों की जड़ है। पहली बात आप देखिए कि आप अल्लाह की एक चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप कोशिश भी कर लें तो आप एक रोटी नहीं ला सकते घर में अपने बच्चों के लिए। ये तो अल्लाह ही है जो आपकी सारे दिन की मेहनतों को कबूल करके आपको देता भी है और पीछे भी बचा लेते हैं। क्या होता है, माँ बाप के रिस्क के सिलसिले में मसरूफियात महदूद होनी चाहिए। औलाद की परवरिश और माहौल पे नज़र ना रखने की कोताही का शिकार होते हैं वो माँ बाप। आज भी वेस्ट में बहुत सारे बच्चों के बिगाड़ के पीछे वजह यही दिखती है कि माँ बाप जॉब्स और कारोबार करते रहे और बच्चे बिगड़ गए। फिर इसी तरह औलाद को बुरे माहौल और गुनाहों से रोशनास करना है। जब वक्त ही नहीं है तो फिर क्या होगा आप खुद ही देखेंगे। और नतीजा नस्लों का बिगाड़, और उसका आखिरी नतीजा उम्मत का बिगाड़ और जवाल है। अल्लाह ताला हमें रिस्क को अल्लाह के हाथ में रखने की तौफीक दे। तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा, इस असूल को कभी ना भूलें। ऐसे लोगों की औलादों को अल्लाह हिदायत पे ले ही आता है, बेशक उन पे वक्त के साथ कुछ असर आ भी जाता है, रंग भी आ जाता है, जो जवानी का एक जोश भी होता है। लेकिन वो माँ बाप जो अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दें, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है। और अल्लाह ताला कौन है अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि उसके ऊपर नजरें लगाएं कि वाकई वो सारी दुनिया को रिस्क दे सकता है। तो जान लो वहुवल्लज़ी खलकस समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था। वो तुम्हें आसमाए क्यों पैदा किया ये देखो, बाकी बातें छोड़ दो, वो गैब के मामले हैं। मेरा आपका मकसद हयात क्या था? लिया ब्लुवकुम, ताकि वो तुमको आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे, ये तो साफ साफ जादू ही है। क्या पता चला इंसान की तख्लीक का मकसद? अय्युकुम अहसनु अमला। तो सवाल पैदा होता है कि अहसनुल अमल क्या है? तो नोट कीजिएगा, दो बड़ी शरायत हैं अहसन अमल की, अच्छी नीयत, खालिस अल्लाह के लिए काम करना, और अच्छा तरीका यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। और अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल देते तो ये ज़रूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज़ रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिसकी हंसी उड़ा रहे थे वो इनको घेर लेगी। कौमों का यही हाल था अम्बिया कराम के साथ। तो गुनाहों के फितने में मुबतला लोग क्या करते हैं? आयत 8 की रोशनी में देखिएगा, सारे ही नबियों का मजाक उड़ाते थे। आज इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जाता है, दाढ़ी का मजाक, हिजाब का मजाक और नमाजों का मजाक और लफ्ज़ मौलवी का मजाक। याद रखिए, अगर आपसे कभी ऐसी कोई चीज़ हो गई तो मान लीजिए कि आप गुनाहों के फितने में मुबतला हैं। हमसे मतलूब क्या है? सब्र और दावा करते रहे। कौन सी दावा? तबलीग वाली दावा। ये नहीं कि दावे करते रहें। अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर इसे इससे ले लें तो बहुत ही नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। और अगर हम इसे कोई मज़ा चखाएं सख्ती के बाद जो इसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है, बस बुराइयां मुझसे जाती रहीं। यकीनन वो बड़ा इतराने वाला शेखी खोर है। इंसान की बेसब्रियों की बात है, और ये खास तौर पर उस इंसान की बात है जिसके दिमाग पर, हवासों पे सिर्फ दुनिया छाई हुई है। इसके बरक्स, सिवाय इनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला भी है। बस शायद कि आप इस वही के कुछ हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और इससे आपका दिल तंग होता है। सिर्फ इनकी इस बात पर कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा, या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता? सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, और हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। क्या पता चला कि लोगों के प्रेशर में आकर इस काम को नहीं छोड़ना। रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो काम करना अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्स रिएक्शन में बदल जाए तो हम भी रास्ता बदलने की कोशिशों में होते हैं। तो याद रखिएगा कि अजरे कबीर के लिए शुक्रे कबीर की जरूरत है। आप अल्लाह के रास्ते में हैं, अल्लाह के दीन को सर्व कर रहे हैं। इस वक्त मेरे समेत आप सभी सर्व कर रहे हैं ना, जो इस सारे पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं। किरदार फर्क है, कुछ लोगों को नजर आते हैं, कुछ नहीं आते। एक नियत कर लीजिए कि इस पे शुक्रगुजार हो जाए, फिर कभी आपसे नहीं छूटेगा। और जो नाशुक्रपन करे, जो रिजेंटमेंट शो करे, फिर उसके लिए तो हर वक्त ही खतरा है कि आपके हाथ से ये नेमत छिन जाएगी। हमसे क्या मतलूब है? हर माहौल और हर हालत में क्या करें? नंबर एक, सब्र करें और अमले साले करें। नतीजा होगा मगफरत और अजरे कबीर। और अगर आप शुक्रगुजार बनते हैं ना, जिसको कहते हैं ना कि बी अ पीपल ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिएगा शुक्रगुजारों को तो अल्लाह वैसे ही बहुत ज्यादा देता है। फिर इसी के बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी छोड़ने वाले नहीं थे इस काम को, लेकिन पीर प्रेशर इतना था कि कभी कभी दिल में ये सवाल आता था कि शायद मेरे बताने का अंदाज अच्छा नहीं, अच्छा मैं ये काम सही नहीं कर रहा, फिर कोई और कर ले, ये स्टाइल था। तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने जो बताया वो हतमी था, खूबसूरत था। आपकी बताई हुई बात की एडिटिंग की जरूरत ही नहीं होती थी, और आपने मनो अन पहुंचा दिया जैसे कि पहुंचाने का हक है। इसी का जिक्र है आगे। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसी ने घड़ा है? जवाब दीजिए, फिर तुम भी इसी के मिसल 10 सूरतें घड़ी भी ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला भी लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करें तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बस क्या तुम मुसलमान होते हो? देखिए, हर कौम की कोई एक पहचान होती है, एक प्राइड होती है, एक ऑनर होती है। मसलन कुछ कौम में गेम्स का रिवाज है, कुछ गाड़ियां बनाने की वजह से मशहूर हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं। आप सभी जानते हैं किस मुल्क की क्या बात कर रही हूँ। इसी तरह अरबों का एक फेम, अरबों की एक प्राइड लिटरेचर था, लैंग्वेज पे उनको मान था। ऐसे दर्जे के अदीब थे, जुबानदान थे, कि फिर उनकी मेमोरी भी इतनी खूबसूरत थी, बड़े बड़े मुकाबले होते। अल्लाह ताला ने जब वहां अल्लाह के नबी को भेजा तो ये कुरान जैसा खूबसूरत मौजज़ा देकर भेजा, और यहाँ चैलेंज भी कर दिया कि चलो जाओ फिर कुलफात बियश्री सुवरे मिसली ही मुफ्तरियातिन। लेकिन वो एक भी चैलेंज को कबूल ना कर सके। उनके दिल मानते थे ये कुरान सच्चा है। कुरान अदब का बेहतरीन मजमू था, हो भी क्यों ना, बल हुआ कलाम अल्लाह, मगर तासुब की वजह से, हठधर्मी की वजह से नहीं मानते थे। दिन को झुटलाते थे, रातों को चुपके चुपके जाकर सुनते थे। आप जाकर वाकयात पढ़िए सीरत के, अहनस बिन शुरैक और उसके साथियों के साथ क्या हुआ। रात को छुपकर सुन रहे हैं और आपस में मिलते हैं और मशवरे करते हैं, और कहते हैं नहीं नहीं अब नहीं सुनेंगे। अबू जहल तक छुप छुप कर कुरान सुनता था, मजा आता था। आज भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है लेकिन उनको इजाजत नहीं है सुनने की, फिर वो छुप छुप के सुनते हैं, बताते नहीं है लेकिन सुनते हैं। तो यही उस दौर का रिवाज था। हजरत उमर काबा के पर्दे में छुप छुप के सूरत सुन रहे थे, और अल्लाह के नबी ने जब सूरत मारिज पढ़ी तो उनके दिल के अंदर ईमान का बीज डला, और बाद में फिर सूरत तौहा सुनकर वो ईमान जुबान पे आ गया। तो इस कुरान की कशिश से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, उनके दिल खिंचते थे। और आज हमें समझ ना भी आए तो भी क्या, अच्छी तिलावत सुनकर दिल पे बात नहीं आती। तो इस किताब का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। बस ये समझ लीजिए कि आप, मैंने इस किताब के लिए वक्त लगाना है। आज एक नियत तो कीजिए, इस जिंदगी को जिंदगी देने वाले के नाम लगाना है। 1 साल अपना डिवोट कीजिए। आप अगर तैयार हैं ना, अल्लाह की तौफीक से मैं साथियों से मशवरे और फरमाइश के बाद 1 साल का कुरान का कोर्स ऑफर करने को तैयार हूँ, अगर अल्लाह ने आपके मेरे नसीब में रखा हो। क्योंकि जितना डिली डेली में पढ़ते हैं उतना ही भटकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि इस कुरान को उतना तो संजीदा समझा जाए जितना हम दुनिया की तालीम में, बच्चे के दूसरी से तीसरी में जाने को माओ ने इतना बड़ा इशू बना दिया, क्या उसे 1 साल में कुरान पढ़ा कर कहीं और ना ले जा चुके होते? तो सोचिएगा, इस पर गौर कीजिए, अपनी राय दें। कोई बात ऑफिशियल नहीं कर रही, मैंने तो अभी अपने दिल की बात की आपसे। आप में तलब है, जहाँ तलब होती है अल्लाह वहाँ रास्ते बना लेता है। मन का ना युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा, रास्ते की एक रुकावट का जिक्र आने लगा। जो शख्स दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत पर फरेबता हुआ जाता है, हम ऐसों को इनके कुल अमाल का भरपूर बदला यही दुनिया में दे देते हैं और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाती। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहां सब इकारत है, और जो कुछ अमाल थे सब बर्बाद होने वाले हैं। दुनिया चाहने वालों को, सब कुछ यहाँ पाने के ख्वाहिशमंद लोगों को, जरूरी नहीं कि यहाँ मिल जाए, लेकिन अल्लाह दे भी दे लेकिन वहां का अकाउंट खाली। तो अपनी नीयत को, अपनी कोशिशों को, अपने इरादों को आखरत ओरिएंटेड कीजिए। आखरत के अकाउंट खोलिए। और आप इस्लाम को भी दूर से देख रहे हैं इसीलिए आपको मुश्किल लगता है। दरवाज़ा खोलिए, अंदर आइए, बैठिए, फिर इसकी खूबसूरतियां देखिए। हमारा हाल क्या कि बंद दरवाजों से, खिड़कियों से झांक कर इस्लाम को घुटन वाला दीन समझते हैं। हाय ऐसा दीन, हाय इतना मुश्किल दीन। तो अल्लाह ताला आपको मुझे एक दलील की बात देते हैं, और ये दलील आपकी मेरी जिंदगी में भी होनी चाहिए। अफमन कान आला बैजीनतिन मिन रब्बिही वयतलूहु शाहिदुम मिन, क्या वो शख्स जो अपने रब की दलील पर हो और इसके साथ अल्लाह की तरफ का गवाह हो, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब गवाह हो, जो पेशवा और रहमत है औरों के बराबर, हो सकता? उन लोगों पे बात है जिनको पहले भी दीन पता था लेकिन उन्होंने नहीं माना। यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फिरकों में से जो भी इसका मुनकिर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नुम है, बस तू इनमें किसी किस्म के शुबे में न रहना। यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। अल्लाह में अक्सरियत में ना करना, क्योंकि मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी। तो आयत 6 से 17 में हमने क्या देखा? इंसान ना शुक्रा है, अल्लाह ताला की आलीशान कुदरत, और काफिरों की कज फहमी, यानी वो गलत समझते हैं अल्लाह के दीन को। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और कुरान अल्लाह का कलाम है। इंसान की कमजोरी देखी कि खुशियों में आपे से बाहर हो जाता है और गमों में डिप्रेशन में चला जाता है। तय कर लो कि तुम दुनिया के तलबगार हो या आखरत के, अब तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। कुरान पाक अपनी इंतहा की तरफ पहुंचता जा रहा है। और फिर क्या सीखा? कि रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा गवाह कुरान मजीद है, जो आज आपके मेरे सामने है। तो लिहाजा करना क्या है, इस बात को समझ लीजिए कि वह मन असलम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाही कज़िबा, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। कौन है जालिम, जरा नोट कीजिएगा। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वयबगूनहा इवजा, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी यानी टेढ़पन तलाश कर लेते हैं, यही आखरत के मुनकिर हैं। छोड़ो छोड़ो, क्या करना है, लो अब कौन पढ़े, लो अब और अपने ऊपर बोझ लो। आज के दौर में आज का फलां फलां फलां, यानी इस तरह की बातें करके लोगों के कदम किताब की तरफ बढ़ने से रोक लेते हैं। तो क्या देखा? आयत 18-19 की रोशनी में देखिएगा कि गुनाहों का फितना और बुरा माहौल। माहौल बुरा हो ना तो ये फितना आकाश बेल की तरह फैलता है। फिर वो जैसे कभी कभी कहते हैं ना, कैंसर बहुत ही फैल गया है जी, ये बड़ी जल्दी फैल रहा है, अब 4 माह रह गए हैं मरीज के पास। कुछ इस किस्म की बातों को जहन में रख लीजिए। कुछ माहौल होते हैं जिसमें गुनाह दब जाते हैं, छुपे रहते हैं, स्लो ग्रोथ होती है, ठंडे होते हैं। ये वो होता है जहाँ इस्लाम गालिब होता है। इसके बरक्स बुरा माहौल, बुरे अमाल और गुनाह और बुरे दोस्त, ये साइमल्टेनियस चलने वाला एक सर्कल है। अच्छा माहौल होगा, अच्छे अमाल होंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो करना क्या फिर? बुरे माहौल को अच्छे में बदलिए, और अगर बुरा माहौल बदल नहीं सकते तो अल्लाह के लिए उस माहौल को छोड़कर अच्छे माहौल में चले जाइए, ताकि कम से कम आपकी पोल्यूशन तो कम हो, आपकी वजह से जो वहाँ घुटन हो रही थी उसको तो ख़त्म कीजिए। तो कहाँ रहें कहाँ ना रहें, ये उस सवाल का जवाब है। दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन अच्छे बन कर रहिए, ज़मीन अल्लाह की, अल्लाह के बंदे बन के रहें। उलाइक लम यकून मुजज़ीन फ़िल अर्ज़, ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सकते हैं और ना कोई इनका हिमायती अल्लाह के सिवा हुआ। इनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा, ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना ही देखते थे। यही है जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया। हमारे यहाँ का कहते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं ये, तो गुनाहों वाली जिंदगी में रहने वाला अपने पाँव काट रहा है। और वो सब कुछ इनसे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। बेशक ये लोग आखिरत में नुकसान पाने वालों में होंगे। अल्लाह का प्यार देखिए, जहां दम घुटता है वो जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि अब तो बस दम ही घुट जाएगा, तो उधर रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो जहां हमारा दिल डर जाता है ना गुनाहों के ख्याल से, तो अल्लाह ताला साथ ही फिर एक और रास्ता दिखाते हैं। इन अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाती व अखबतु इला रब्बिहिम, ये है आपकी थीम आयत। उलाइक असहाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून, यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए, यानी ईमान लाने के बाद सो नहीं गए कि कलमा पढ़ दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब सोए रहे, क्या ज़रूरत है जाने की और बैठने की, बाद में किसी के नोट्स लेंगे और जाके आगे पेश कर देंगे। याद रखिए, ऐसा दीन नहीं है। हमारा दीन ईमान के बाद अमल सवाले की दावत देता है। ईमान का हतमी नतीजा अमल सवाले है। आप एक डैम लिखिए, अमल सवाले क्या है? ईमान का लाजमी नतीजा। सच्चा ईमान अंदर आता है ना, तो उसके बाद अमल सवाले को दिल चाहता है। अगर अमल सवाले नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे। इखबात का लफ्ज़ यहाँ आया, बुझती हुई चिंगारियों को इखबात कहते हैं। खबता, सिर्फ अल्लाह ही के होके रहे। नरमी, आजजी, पहले ईमान था फिर अमल सवाले हुए तो नेक हो गए ना, लोगों ने भी आपको नेक कहना शुरू कर दिया, अब आप पकड़े फूफा करें बड़े बने, हाँ हम इतने नेक, इतनी नफलें, इतनी नमाजें, इतने कुरान, नहीं, मन तवादा लिल्लाह, झुकते जाइए। लोग गुनाह करके ना डरे, आप नेकियां करके भी डरे। किसी ने आपको नाराज कर दिया, किसी रिश्तेदार से तू तू मैं मां हो गई, कई दिन से बोलचाल बंद थी, जाइए नाराज को अल्लाह के लिए पुकारिए, क्योंकि मन तवादा लिल्लाह ही इल्ला रफाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। हजरत उमर फारूक अपने बारे में कहा करते थे कि कभी मैं सोचता हूँ कि मैदान मख्शर में अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आज मैंने किसी को माफ नहीं करना, सिर्फ एक को करूंगा, और मेरे दिल में आता है देखना वो मैं होऊंगा। और इसका अपोजिट भी सोचता हूँ कि आज मैंने सबको माफ कर देना, किसी एक को नहीं करना, फिर भी खौफ यह है कि वो मैं हूं। ये है अखबात, अपने अंदर हम्बलनेस लाए, नेकियां करके अकड़े नहीं। बिफोर ऑनर कम्स ह्यूमिलिटी, अपने आप को जितना झुकाते जाएंगे अच्छा होगा। और इस पे भी मुहावरा लिख लीजिए कि सुराही सर नगू कर होके भरा करती है पैमाना, तो अपनी नेकियों पे अकड़िए नहीं, वरना नेकियां बदियों में बदल जाएंगी, और हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला मजीद नेकियां करने की तौफीक भी ना दे। तो लिहाजा जन्नत में जाने की कीमत यही है कि नेकियां करते जाइए और आजिज मिजाज होते जाइए, फिर वो जन्नत में रहेंगे जहां हमेशा रहना है। और फिर आप देखिए, इन दोनों फिरकों की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाली जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? तो क्या देखा है 2024 तक, दो तरह के लोग, एक है अंधे और बहरे, दूसरे हैं देखने और सुनने वाले, दोनों बराबर नहीं। तो हमसे मतलूब क्या है? पहले ईमान, फिर अमल सवाले, और फिर इखबात। सवाल पैदा होता है कि मुखबित कौन होता है, यानी इखबात से इसम फाइल मुखबित। तो देखिएगा इन आयात की रोशनी में, नंबर एक, और ये आपने मैंने सेल्फ एनालिसिस करना है, चेक कीजिएगा कि मुखबित हूँ अल्लाह के हुक्मों के आगे बिछा हुआ, बिछ बिछ जाता है, वो कहते हैं सत बिस्मिल्ला, सो बिस्मिल्ला, मैं अपने अल्लाह का हुक्म खुशी से मानता हूँ, फिर आजीज होता है, झुका हुआ होता है, डाउन टू अर्थ, हम्बल। और भी कोई काम हो तो बताइएगा जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे मौका दिया, ये जुमले बोलिए अल्लाह का काम करके, फिर आप मुखबित होंगे। नेकियां और गुनाह दोनों करके डरने वाला, इसको तो सुन के चूमने को दिल करता है। नेकियां करके भी डरिए, गुनाह करके भी डरिए। किस बात पे? कि नेकियां कबूल ना हुई तो क्या होगा, क्योंकि वो जुमला याद कीजिए जो पहले पारे के आखिर में था, कि असल चीज काबिलियत नहीं, कबूलियत है। आप कितने भी काबिल हैं लेकिन आपको कबूल कोई नहीं कर रहा, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नाराजगी भी है, आपका बिहेवियर प्रॉब्लम भी है। एक औरत है, अच्छा खाना बनाती है, खूबसूरत खुशबूदार मज़े का टेबल क्लॉथ लगाए, और कहती है अब खा मर लें, पी लें, जो लें, क्या मुसीबत है, सुबह से थक गई। सच बताइए, शौहर और बच्चों और घर के बुजुर्गों के हलक से वो खाना उतरेगा? तो अपनी नेकियों पे रवैया रखिए इख़बात वाला, और गुनाहों पे डरना तो आप सभी जानते हैं, ये तो इस बारे का थीम है। तो आज के बाद आपने मैंने एक आंसू तो दिन में बहाने की कोशिश कीजिए गुनाह को याद करके, शायद वही आंसू अल्लाह ताला आपके पलड़े में संभाल दे, और कल कयामत के दिन जब एक नेकी की कमी की वजह से जन्नत की बजाय जहन्नम मिलेगी ना, तो वहां वो आंसू का एक कतरा तो लेगा और जन्नत मिलेगी, ऐसी रिवायात हमें मिलती हैं। फिर इसी तरह गुस्से पे काबू पाने वाला होता है मुखबित, बिफर नहीं पड़ता, अभी तब पल में तोला पल में माशा, सुबह आप कुछ और हैं, शाम में आप कुछ और हैं, कल आप कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और हो गए, क्या करें हम तो अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए, ये ना लोग कहें आपके बारे में। फिर इसी तरह अल्लाह की बात को सुनकर अपनी आवाजें दबाने वाला, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत हुजरात में, किला तरफ अस्वातकुम, आवाजें ऊंची न रखी, अल्लाह की बात आ गई तो माशरा खानदान बिरादरी सब की आवाजें नीची इंशाल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत सुन लीजिए 7184, अब्दुल्ला बिन उमर से ये रिवायत है, जब जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे और दोजख वाले दोजख में, तो मौत लाई जाएगी और जन्नत और दोजख के बीच में जिबह की जाएगी, फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों अब मौत नहीं, और ऐ दोजख वालों अब मौत नहीं। जन्नत वालों को ये सुनकर खुशी पर खुशी हासिल होगी और दोजख वालों को रंज पर रंज होगा। तो आयत 23 में क्या देखा, खलूद फिल नार या खलूद फिल जन्ना। अब आपकी मेरी मर्जी है कि हम अपने लिए क्या चीज़ तैयार करते हैं, कहाँ जाने का शौक है और कहाँ नहीं जाना चाहते। हुम फीहा खालिदून। अब यहाँ से आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होगा जो कई रुकू तक चलेगा। कुरान पाक में ये किस्सा बहुत जगह है, लेकिन हर नबी के बारे में ये आता है, जैसे आप सूरह कसस में पढ़ेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत है, तो हजरत नूह का किस्सा यहाँ कदरे डिटेल से भी है, और खास तौर पे जो मौजू है वो क्या है कि जब गुनाहों का नशा लग जाता है तो नूह का बेटा भी डूब जाता है। बाप बेटे के ताल्लुक को समझने के लिए बहुत खूबसूरत आयात आने वाली हैं, आइए देखते हैं। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। नबी की दर्दमंदी देखिए, तड़प देखिए, और यही सच्चे दाई दीन की तड़प भी होती है और होनी चाहिए। तीन लफ्ज आज अपने इस बारे के साथ भी याद रखने हैं, इबादत, अबदियत और अबूदियत, ये तीन मरहले हैं। आप कहाँ खड़े हैं, बस इंशाल्लाह एक स्टेप ऊपर जाकर अल्लाह के हुक्म से हमने फिर अबूदियत के दर्जे पे पहुंचना है। इसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं। देखिए, हर दौर में नबी बशरता के नूर ये झगड़ा रहा, इन झगड़ों को पीछे किया दूसरा मामला, और तेरे ताबेदारों को भी हम सरसरी नजर में देखते हैं, सिवाय नीच और मोटी अकल वालों के और कोई नहीं। हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ही समझ रहे हैं। अगर आप ताने और इल्जाम गिने ना इस एक आयत में और अगली आयतों में, ये कौम नबी पे क्या लगा रही है और फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि जो सच्चे दाई दीन होते हैं वो तनकीद सुनकर काम को छोड़ नहीं देते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरी कौम वालों, प्यार का अंदाज देखिए, या कौमी, पहले अपनाइयत तो कीजिए। याद रखिए, दाई और मदऊ के बीच में पहले दलील नहीं होती, पहले उनसियत होती है, ताल्लुक होता है। हम लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बनाते। आपकी बेटी ससुराल में गई, आपने उसको कुरान पढ़ा के भेजा, वो जाती उस्तानी बन जाए, और ये हराम ये हलाल और ये मुनाफिक नहीं, पहले जगह बनाए, खिदमत करे, दुआएं ले, दुआएं दे, जब जगह बन जाती है तो आपकी बात की जगह भी बन जाती है। नूह ने कहा, मेरी कौम वालों, मुझे बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे इसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो, फिर वो तुम्हारी नजरों में ना आई हो, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले मंड दूं, हालांकि तुम इससे बेजार हो। नोट कीजिएगा, हिदायत जबरदस्ती किसी के गले में नहीं मंडी जाती। हर दौर का यही मसला रहा, पैगाम देने वाले ने पैगाम दिया, छुटलाने वालों ने छुटलाया। कल मला थे, आज के मला बड़े बड़े ट्विटर्स, फेसबुक्स, इंस्टाग्राम और ETC, जिनका गलत इस्तेमाल हो, आज यही दीन फैलाने का भी जरिया है और आज गलत चीजों के फैलाने का भी जरिया है। मला कहते हैं उसके जो लोगों के जहनों पर छाया हो, तो तकबर के साथ कबूलियत हक नहीं चलती, ये दोनों साथ चलते नहीं है। फिर दूसरी बात देखिए कि अराज़िलुना, दीज थर्ड क्लास पीपल, हर दौर में अल्लाह के नबी के दौर के समय दुश्मनों ने यही कहा कि आप कैसे गरीब लोग आते जाते, ये क्या बिलाल आ जाते हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद और बकरियों की बू इनसे आती है और ये वो। आज भी लोग यही कहते हैं, दीस मुल्लास, ये हिजाबीज, ये दाढ़ी रख के देखिए झूठ बोलने वाले। और देखिए एक और एतराज क्या करते, बरमान नरा लकुम अलैना, कोई हमारे ऊपर तुम बड़े ही नहीं, आप तो बिल्कुल कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं दिख रहे और बहुत दौलतमंद नहीं है। यानी जो बात हमारी अकल में नहीं आई, ये इन गरीब लोगों को पहले कैसे समझ आ गई, ये भी एक रौनत थी और एक उनकी रिजिडिटी थी। तो याद रखिए कि इस्लाम की इज्जत को जब लोग स्टेटस के साथ जोड़ दें तो इस्लाम खत्म हो जाता है। और दूसरी बात है कि हिदायत जबरदस्ती नहीं दी जा सकती, अनुल दिमुखमुहा, ये हमेशा दिल के अंदर से निकलती है। जब आप दावत देने निकले और ये लेके गए ना, आज तो फिर देखना मनवा के लाऊंगी, यानी बस लोगों का अंदाज लठमार होता है, आज दाढ़ी निकलवा के आऊंगा इसकी, आज इसको मैं देखना निकाब में मुब्तला करके लाऊंगी, आपका मेरा ये काम नहीं है। वरना सख्ती आएगी अंदाज में, रौनत आएगी, तकब्बुर आएगा, आप कन्विंस नहीं करेंगे, आप कन्वे करेंगे। जब तक अगला दिल नहीं खोलेगा बात अंदर नहीं जाएगी। साथ रहने वालों में से किसी ने मुझसे एक बात पूछी, बड़ी पर्सनल बात है वैसे तो, तबलीग के रास्ते से इसीलिए बताने लगी हूँ। कहने लगी कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा मैं इसलिए कि इंसान को इंसान समझती हूँ, इंसान उनसे भी है और इंसान नसीहत से भी है, इंसान भूलता भी है। जब आप लोगों से मोहब्बत करें ना, मैं तो कहती हूँ अगर आपको टीचर बनना है तो पहले मोहब्बत करना सीखें, अगर आपने टीचर बनना है तो पहले तकवा डालने की कोशिश कीजिए, किसी को नहीं पता कितना डला लेकिन कोशिश में तो रहें। जब तक आप खुद उस जगह पे नहीं आते कि आपको बात सुनने वालों से मोहब्बत ना हो, आपकी जुबान में कठोरपन तो होगा ही, और अगला बंदा कहाँ दिल खोले, आपकी बात तो 100% सच्ची है, दलील तो पूरी कुरान सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन पेश आपने ऐसे की जैसे किसी को खुशबूदार खाना किसी भी ट्रैश रखने वाली प्लेट में रख कर पेश कर दिया जाए। तो जबरदस्ती ना कीजिए। और एक और बात, वो क्या कि मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस माल पर कोई माल नहीं मांगता, यानी अल्लाह से सिर्फ अजर लीजिए, माल के लिए आने वाले माल देख कर चले जाते हैं। वो टीचर हो सकते हैं लेकिन वो मेंटोर नहीं हो सकते, वो जॉब करते हैं, स्कूल में करेंगे, कॉलेज में कर लेंगे, वो किसी जगह मदरसे में भी कर लें, ठीक है जरूरियात के तहत किसी को लिया दिया जा सकता है वो अलग बात है, लेकिन जो मिशन बना के करता है ना उसकी बात में असर होगा। इसीलिए फरमाया कि मेरी कौम वालों, मुझे तुमसे लेना क्या है, क्या तुम्हारे पास तुम मुझे दे क्या सकते हो, ये अंदाज है। तो याद रखिए कि हम लोगों की जाहिरियत पे खोते हैं। फरमाया मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह के हाँ है, ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। अब आपके कहने पे पहले इसको निकालो फिर ये ना हो, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे पसंद नहीं, इसकी आते अच्छी नहीं, ये तो सारा कुछ अपने ऊपर ले लेता, मैं इतने फरमाइशी प्रोग्राम में काम नहीं हो सकता। जो आया अल्लाह के लिए आया, आप उसको कहाँ से निकाल सकते हैं, और हम उसके साथ नहीं चल सकते, हमारी वेवलेंथ उससे नहीं मिलती। याद रखिए कुछ लोग जाहरी चीजों में खोए रहते हैं और फिर अपना नुकसान कर लेते हैं, बोले जब जहां जिसके साथ मुझे खड़ा कर देंगे मैं काम करने को तैयार हूँ, और जिनको मकसद प्यारा होता है वो ऐसा ही करते हैं। और इसके अलावा ये टीम में ना हो, ये हुआ तो मैं नहीं, वो हुई तो मैं नहीं, मैं गया तो ये ना जाएगा, ये होगा तो वो ना करेगा, ये अंदाज अच्छे नहीं होते, तौफीक छिन जाती है। फिर देखिए प्यार का अंदाज, मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, क्या तुम कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ते, ये जरूरत नहीं होती किसी को छोड़ते या निकालते हुए। कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा तुम इतने बेसब्रे हो गए, तुमसे भी ऐसी गलती होते होते रहेगी जैसे यूनुस जल्दी में निकल गए थे। तो याद रखिए जब कोई दीन का काम करे आप उसको नहीं हटाएंगे, ये अपने लिए वादा कर लें अपने आप से, इल्ला ये कि फिर वो खुद ही छोड़ दे। और सच्चे दिल वालों को अल्लाह कभी छोड़ने नहीं देता, ये भी मैं आपको बता दूं। आप बैठी हैं ना पढ़ने, 11 पारे हो गए अल्लाह के हुक्म से, आप 30वें तक पहुंचेंगी अगर सच्चे दिल से सुन रहे हैं। और आप जाके देख लीजिए शुरू के पारे कितने लोग सुनते हैं, बीच में थोड़े सुनेंगे, आखिरी पारा फिर हजारों क्या लाखों पे चला जाएगा, तो ये कोई मजे की बातें नहीं होती। अब नबियों की दावत का एक और खूबसूरत नुक्ता देखिएगा, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं इन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं, इनके दिल में जो है इसे अल्लाह ही खूब जानता है, अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में होगा। देखिए नबियों को कितना फिक्र है कि मेरी ना पकड़ हो जाए, और एक जुमला आज लिख लीजिए, दूसरों की हिदायत के लिए खुद गुमराह ना होइएगा। दूसरों को तभी बचाएंगे जब आप खुद बचेंगे। अगर बचाने वाला खुद ही डूब गया तो बताइए डूबने वाले को वो कैसे बचाएगा। तो हदों में रहकर दीन का काम कीजिए, लिमिट्स को क्रॉस ना कीजिए। चले कोई बात नहीं, मैं जाके जरा उस जवान बच्चे को नसीहत कर रहा हूँ और जरा सी अदाई भी दिखा दूँ, फिर वो खुश होगा तो फिर मेरी बात सुनेगा, वो दीन तो ले लेगा साथ आपको भी मांगेगा। तो तबलीग में भी मैनर्स एंड एटिकेट्स होने चाहिए। मजबूरन औरत मर्द से बात करेगी, मर्द औरत से बात करेगा, साथ रहकर भी काम हो सकता है, लेकिन उसमें लिमिट्स होनी चाहिए। जहां बेतकल्फी आएगी रिश्ते नाजुक हो जाएंगे, और आज तबलीग के नाम पे बस लोग ये लिमिट्स खत्म कर देते हैं और उसकी फिर बहुत बड़ी सजा मिलती है। और उसके बाद आप देख लीजिए आज पूरी दुनिया को देखिए, खासतौर पर यूथ में जो तबलीग के अंदाज आते हैं वो क्या है जी, मैं वो लड़की है जरा बड़ी इंटरेस्टेड है, जरा मैं उसको दीन सिखाने जा रहा हूँ। जाइए बाद में मौलवी साहब से आपके पूछेंगे अब मैं उसे निकाह कर लूं। फितरी बात है, जेंडर्स में अट्रैक्शन होती है, कॉन्शियसनेस होती है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के जरिए हमें आपको दो टोक सिखा दिया, ये भी नहीं कि लठ मारो और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बेतकल्फी का अंदाज होने लगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपको यहाँ एक और अंदाज भी दिख रहा होगा, हजरत नूह कितने प्यार से बात कर रहे हैं और हर बात का जवाब वो किस भोंडेपन से दे रहे हैं, इसका इजहार आयत 32 में देखिएगा। कालू या नूह कद जादलतना, कौम के लोगों ने कहा है नूह तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली, यानी तू तो हमसे झगड़ रहा है, अब तो जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले अगर तू सच्चों में है। जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ तुम इसे हराने वाले नहीं हो, तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफा नहीं दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना करूं। सच नहीं है, कभी आपने अल्लाह ना करे अपने बिगड़े हुए बच्चे को ये जुमला बोला हो तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा बेटा जा फिर जो तेरे नसीब में, मैंने तो तुझे समझा दिया, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ क्या तेरे हक में अच्छा है क्या बुरा, जा फिर अगर परेशान हुआ तो आ जाना मेरे ही पास। माँ ये नहीं कहती मेरे पास नहीं आना, जब तुझे समझ आ जाएगी ना कि कसूर मेरा था तो पलट आना, अल्लाह का ये अंदाज है। जब कौमें नबियों के साथ इस तरह की मुमारियां करती हैं तो अम्बिया कराम भी फिर इसी तरह रुंधी हुई आवाजों में बात करते होंगे। आज लोग जाहिर परस्त हो गए, जाहरी कवरिंग्स को देखते हैं। हम देखिए महफिलों में पार्टियों में मिलने जुलने वालों में किन को लोग पसंद करते हैं, सूटेड बूटेड ऑर्गेनाइज फैशनेबल, कौन किस गाड़ी में आया, किसका बच्चा किस स्कूल में है, हमारी नजरें भी उधर ही रींचती हैं। अल्लाह कहता है मुझे इसकी परवाह ही नहीं है, तुम उनको हल्का समझो, उनको तुम मासियां को, हाय ये बसों में लटके आने वाले, ये काले बुरकों में, इनसे तो पसीने की बू आती है। तो याद रखिए जहां रौनत होगी और ये रिजेंटमेंट होगी वहां फिर दीन अंदर नहीं आएगा। फिर एक और चीज आपने नोट की होगी नायात में कि बार बार नूह को झुटला रहे हैं, यानी आयत 32 पे अगर आप नजरें डालें ना, एक बार फिर दो बार फिर तीसरी बार, वो एक बात कहते हैं ये दूसरी खोलते हैं, एक इतराज। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, आप उनका एक मसला हल करें उनको दूसरा शुरू होगा, जैसे पुरानी गाड़ी एक दिन ठीक करा के लाते हैं दूसरे दिन उसके पहिए खराब, चौथे दिन उसका इंजन खराब। तो ये पुरानी गाड़ियों की तरह झुंझलाने वाले लोग बस दफा दावत के लिए निकलने वालों को भी तंग करते हैं, नीयत ये होती है कि किसी तरह इनका सुकून बर्बाद किया जाए। आप और मैं नूह की जगह होते तो क्या करते, जुमला लिखिएगा, जब कोशिशों के अच्छे नतीजे निकलें तो दिल जुड़ते हैं, दिल खिलते हैं, टीम भी जुड़ी रहती है, सब कहते हैं माशाल्लाह आज देखा कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके बरक्स जब कोशिशों के अच्छे नतीजे ना निकलें, नंबर एक इल्जाम तराशी और सबसे बड़ी बात डीमोटिवेशन। हम तो शायद पहली बार ही पलट के आते कि आज के बाद हम तो नहीं बताएंगे, और इतनी बातें कौन सुने। तो बात समझ लीजिए, आप पे 10 दफा कोई तनकीद करें आपके 11 दफा मैं अपनी बात को मानती हूँ, मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी। तो हजरत नूह का जवाब सुन लीजिए, बशर्ते कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम सब का परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे, यानी मैं कैसे तुम्हें हिदायत दूं जबकि अल्लाह ही नहीं देना चाह रहा, और अल्लाह किस को नहीं देना चाहता जो लेना नहीं चाहता। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद इसी ने घड़ लिया है, तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है। आज भी लोग कहते हैं मौलवियों की बातें, ये ऐसी इन्होंने तफसीरें बदल दी, दीन तो ऐसा नहीं था। तो मुराद ये है कि जब हक वाले पे लोग एतराज करें कि ये तो आपकी बातें हैं तो उसको बहसों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये कह दीजिए ठीक है फिर अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो फिर इसका गुनाह मुझ पर होगा, हाँ मैं उन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। यानी फिर कल ये ना कहना कि नूह नहीं आए थे, और आप पढ़िए तीसरे पारे में, जहन्नुम में खड़ा कर कर फरिश्ता पूछ रहे आलम यातिकुम नजीर, आया तो कटाने वाला जी आए तो थे लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। तो याद रखिएगा गुनाहों के फितने में मुबतला लोगों का और उनके दरमियान दाई दीन का किरदार कैसा होना चाहिए? दोहरा लीजिए 28-35 आयतों के बीच में। नंबर एक, अक्सरियत की मुखालफत और तनकीद से नहीं घबराता, हक को हर हाल में मनोअन पेश करता है, पूरे एतमाद होता है, पुरअज़्म होता है और अपने काम को नहीं छोड़ता। अपने आप को चेक कर लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम की अब कौम की पकड़ का वक्त आ रहा है। देखिए, कौमें जब नहीं मानती ना, तो फिर अल्लाह ने भी तो उनको ज़ाया थोड़ी करना है नबियों को, इसलिए उनको वहां से निकाला जाता है। और उन जालिमों के साथ क्या किया जाता है, देखिए आयत नंबर 36 को। वउहिय्या इला नूहिन्नहु लयूमिना मिन कौमिक इल्ला मन कद आमन। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं। नोट कीजिए, अजाब सिर्फ उस वक्त आता है जब एक भी साहबे खैर नहीं रहता, जिसको अपनी जुबान में आप कहते हैं इन तिलों में अब तेल नहीं। बस तो इन कामों पर गमगीन ना हो, और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। कितना दो टोक अंदाज है अल्लाह सुबहान तला का। अल्लाह तला मरूब नहीं होता कि कौन कितना पढ़ाता है और कितने घंटे पढ़ाता है और कितने साल से पढ़ा रहा है। अल्लाह तला बिल्कुल सीधी बात करते हैं। वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, इनकी कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते वो इनका मजाक उड़ाते, और वो कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। आप इसका जवाब लेंगे आगे सूरत मुतफ़िफ़ीन में, जब अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में बिठाकर नीचे जहन्नुम में जलते हुए लोग दिखाएगा और पूछेगा हल सुब्बी बल कुफ़ार मा कानू यफ़अलून। सोचिए उस वक्त बिलाल को कितना सुकून मिलेगा कि मेरे पे जो जुल्म हुए उसके बदले में मुझे तो ये मिल गया, और जुल्म करने वाला आज की तरह। तो एक जुमला नोट कीजिएगा, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी की, जुमले मिलते हैं। अच्छा बाबा जी, ये कश्ती पहाड़ों पे चलेगी, ये सहराओं में चलेगी, क्योंकि अभी अजाब नहीं आया था। तो यहाँ एक बहुत प्यारा नुक्ता नोट कीजिएगा, दाइये दीन को वक्त से पहले वो दिखने लगता है जो कि आम लोगों को नहीं दिखता। अभी सैलाब आना था, अल्लाह वक्त से पहले तैयार करवा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं दिखता तो मजाक उड़ाते हैं। कल जैसे नूह की कश्ती को देख कर लोग हंसे, आज भी दीन पर अमल करने वाले को देख कर लोग हंसते हैं। तो दीन पर अमल की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाना आपके सच्चे दीनदार होने का एक ऐसे टेस्ट होता है। और एक जुमला लिखिए, हिदायत का दारो मदार बताने वाले के बताने पर नहीं, सुनने वाले के सुनने पर है। लोग कहते हैं लोग अच्छा बताते ही नहीं, बताने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और सुनने वाले कुरैश मक्का हो, क्या नतीजा निकला सबको पता है। तो बात यह है कि जब तक सुनने वाला सुनने के मूड में नहीं, अब इस वक्त आपके कानों में आवाज आ रही है, आप साथ बातें करें, साथ इधर से उधर जाएं, किसको हिदायत मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं पूरे यकीन से कह सकते हो कि आपकी आईडी आप नहीं है, आपकी आईडी आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। पता कैसे चलेगा किसने पूरा पढ़ा? एंड ऑफ दी दौरे कुरान, जो पूरा बदलने की पूरी कोशिशों में होगा, फिर जितनी हो गई जितनी छूट गई अल्लाह उसके लिए आसानियां कर देगा। तो क्या फरमाया, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जिसे रुसवा करे, और इस पर हमेशगी की सजा उतर आए। थोड़े दिन का मजाक उड़ाया, हमेशा की सजा भुगती, यही अंजाम होता है ऐसे लोगों का। तो क्या पता चला आयात के उनवान 18 से 39, जो अहले हक का मजाक उड़ाएगा तो इसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। सबसे बड़े जालिम और बदनसीब कौन लोग हैं, मिसाल हमने देखी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के साथ कशमकश देखी, और कौम का हजरत नूह से अजाब लाने का मुतालबा देखा। देखिए एंड पे कौमें खुद ही मांगती हैं, ये भी एक एंडिंग पॉइंट होता है, चलाओ फिर फारिग करो हमें, आई एम गोइंग, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, ये अंदाज है। तो अब यहां से देखिए कि बिल्कुल आप तरतीब से चल रहे हैं ना, जो वाकयात उनके साथ चल रहे थे उसी का अंदाजा अब आपको यहाँ दिखेगा। अल्लाह का हुक्म जब आता है तो फिर क्या होता है और किस तरीके से होता है, उसके लिए अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम देते हैं। फसौफ तआलमून, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर उबलने लगा, हमने कहा कि कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े दो जानवर, एक नर और मादा सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी, इसके साथ ईमान वाले थे ही बहुत कम। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए कि हजरत नूह कश्ती बना रहे थे वही की रोशनी में। आज भी वो लोग जो वही की रोशनी में नेक अमाल करते हैं, इंशाअल्लाह वो बच जाएंगे, और अल्लाह हमें हमेशा वही के मुताबिक अमल करने वाला बना दे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इन्ना रब्बी लगफूर और रहीम। कश्ती में बैठने की दुआ भी इसी से मंसूब की जाती है। वो कश्ती ने पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, जो कि किनारे पर खड़ा था, रिवायत में आता है कि इसका नाम कनान था, पुकार कर कहा है, मेरे बच्चे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न होना। अल्लाह अकबर। हजरत नूह के दिल की तड़प को महसूस कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र करते हुए, इंसानियत के जवान बच्चों की, मुसलमानों की, उम्मते मुस्लिमा की यूथ की फिक्र करते हुए इस वाक्य को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पिसरे नूह सिंबल है आज के मुसलमान यूथ का। माँ बाप आज परेशान दिखते हैं, लेकिन उनको अल्लाह की वही के साथ अमल करना नहीं आ रहा। आपको विजुअलाइज होगा, यानी जैसे आप कहते हैं ना, ग्राफिकली पिक्चराइज किया गया, आंखों देखा हाल है कि कैसे एक बाप बेटे के लिए तड़प रहा है, और लोग तड़प रहे हैं, डूब रहे हैं, और हंगामा और शोर और सैलाब और तूफान। जरा सा सुनिएगा, वो कश्ती ने पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, जो कि किनारे पर था, पुकार कर कहा, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न रह। हजरत नूह यहाँ नबी बनकर नहीं, बाप बनकर पुकार रहे हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है ना, ये तड़प तो होती है ना, और काफिरों में क्यों ना हो जा, बुरी सोहबत थी। तो औलाद को कहते रहिए, सुनाते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए। नबी के चार बेटों में से तीन हिदायत पर हैं, एक बिगड़ गया, उसका जिक्र है कुरान में, तीन का नहीं। क्योंकि अगर औलादों में एक औलाद बिगड़ गई तो सारा सुख चैन खत्म होगा। तो अपने बच्चों को खुद से ना काटिए, अगली सूरत में भी यही सीखने वाले हैं हम इंशाल्लाह। और बच्चे का हाल क्या था सुनिए। इसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा। आउज़ु बिल्लाह कहने की बजाय आउज़ु बिल जबल, याद रखे, बड़े बड़े पहाड़ भी अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं टलते। कहने लगा, ये मुझे पानी से बचा लेगा, ये है मुशरिक बेटा, अकीदा बिगड़ चुका है, अल्लाह के माँ सिवा को बड़ा समझ रहा है। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ। इसी वक्त इन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में हो गया। नूह का बेटा डूब गया, 950 साल की तबलीग करने वाले का बेटा डूब गया, अल्लाह के नबी का बेटा डूब गया, इतनी आजजियों के साथ बार बार या कौमी कहने वालों का बेटा डूब गया। आज आप किसी को तबलीग करता ही देख लें, कोई आलिम मशहूर हो चुका हो, हम उनके बच्चों के बारे में जजमेंटल होने लगते हैं। याद रखिए, एक कोड वर्ड लिखिए, किसी भी ऐसी बहन या भाई जो तबलीग से, इबलाग से, तालीम से, ताल्लुम से जुड़ी हो, उनके बच्चों के बारे में एबनॉर्मल रवैये ना रखिए। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, ये खुद नेक है ना, अब इनके बच्चे बड़े नेक होंगे, बड़े शरीफ होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में तस्बीहां पकड़ के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते होंगे, शरारते तो करेंगे नहीं, खाना तो इधर उधर गिराएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है। यानी बास दफा लोग ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। किसी के बच्चे में अगर वाकई इस्लामी, वाकई आप मानते हैं एक बाजी हैं, एक उस्तानी जी, उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, आप ये ना कहिए, कभी आप सोच सकते हैं कि जो दूसरों को कहे वो अपनों को नहीं कहेगा। इस वक्त ये मिसाल याद रखिएगा, करें क्या, आप अपने बच्चों की इस्लाह की फिक्र है ना, दूसरों के बच्चों की इस्लाह की कोशिशें शुरू कर दें। एक आलिम से किसी माँ ने यही सवाल किया था, एक माँ ने कहा मेरा बच्चा खाता नहीं है, कहने लगे तुम किसी और के बच्चे को खिलाओ, अल्लाह बरकत में तुम्हारे बच्चे को खाने की तौफीक देगा, तुम किसी और के बच्चे को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा भी पढ़ने लगेगा। तो याद रखिए, आज के दौर में उन्हीं के बच्चे इंशाल्लाह महफूज हैं जो अल्लाह को कल पेश तो करेंगे कि अल्लाह हमने तो दिन रात तेरी इंसानियत को बचाने की कोशिश की थी, अब इसे एक छोटे से इंसान को भी बचा दे। कुछ तो अपने डिपॉजिट में रखिए ना जो कल पेश कर सकें, और फिर अल्लाह ताला हमारी औलादों को बेहतरीन रास्तों पर रखेगा। अब देखिए, गुनाहों का फितना, आयत 40 से 43 की रोशनी में, बेटे के अंदर बेजीना थी, जो हर इंसान के अंदर एक पायलट फ्लेम है हिदायत पर रहने का, मगर हुआ क्या, पहली बात है कि दोस्ती अच्छी ना रही, हक के इनकार करने वालों और दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ रहकर बिगड़ गया। आज भी मुसलमान यूथ वहीं बिगड़ रही है जहां उनके माँ बाप ने उनको खुला छोड़ दिया, खुद तो कमाने और खाने पीने में लगे रहे और बच्चे दूसरों के साथ दोस्तियां करते रहे। और आप एक दिन किसी ऐसे के साथ जाएंगे, आपको बुरा लगेगा जो आपके दीन का मजाक उड़ाए, दूसरे तीसरे दिन आप हो सकता है खुद भी वही काम करें। फिर इसी तरह देखिए कि बेटा बाप से नहीं, बुरे माहौल और गुनाहों से मुतासिर था। आज भी ऐसा है, अपने माँ बाप जहर लगते हैं, और दोस्त और दोस्तों के घर वाले अच्छे लगते हैं तो अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात दुरुस्त कीजिए। फिर अल्लाह की बजाय मादी सहारों पर भरोसा था, कहाँ जबल और कहाँ रब्बे जबल, और अजाब का शिकार हो गया। आज भी गुनाहों में डूबी हुई नस्लें डूबेंगी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान नस्लों में बड़ी खैर है। अब अजाब आ गया, पकड़ आ गई, नबी के सामने हो गया और जवान बच्चा बाप की आंखों के सामने डूब गया, और बाप ने अल्लाह के फैसले पर कोई इतराज़ भी नहीं किया। हाँ, बेटे की मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, कैसे, आइए देखिएगा। अल्लाह ताला जब लाते हैं मुसीबतें, वबाएं, परेशानियां, कोरोना, तो आती भी नहीं दिखती और जाती भी नहीं दिखेंगी इंशाल्लाह। कैसे, अल्लाह ताला का फैसला सुन लीजिए। वकीला यार दुबले माँ की, फरमाती आ गया जमीन अपने पानी को निकल जा रहा है, आसमान बस कर थम जा। यानी जमीन से भी पानी निकला था चश्मों की सूरत में, तन्नूर उबल पड़े थे, और इसी तरह आसमान से तो बरसता ही है पानी। इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया। अल्लाह इस वबा को भी इंसानियत से दूर कर दे। और कश्ती जुदी पहाड़ पर जा लगी और फरमा दिया गया जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा, हजरत नूह की न्याज बंदी, फकाल रब्बी नबनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक व अंता अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे लगता है कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले पर एतराज़ भी नहीं कर रहे और बेटे की मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। क्या कहा, नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा है, मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर है। देखिए एतराज इसमें कोई नहीं, कहना ये चाह रहे हैं कि तूने तो कहा था, ऊपर गुजरा ना, कि तेरे अहल को बचा लूंगा, तो अल्लाह तला क्या हुआ। इसको कहते हैं अदबुल अम्बिया। अदब के अंदाज में अम्बिया किराम बहुत बादब थे, अल्लाह तला से बात करते हुए भी और बंदों से भी, और बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आप में खूबी है कि नहीं, अदब है तो आप चुने जाएंगे, और इसके बरक्स आप खुद सोचिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है, इसके काम बिल्कुल ही नाशायस्ता हैं, तुझे हरगिज वो चीज़ ना मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुतलकन यानी बिल्कुल भी इल्म ना हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार कराने से बाज रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पालनहार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और तू मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फिकर ईमान की लग गई, ये है असल में तकवा, ये है असल में वो चीज़ जो इंसान में आ जाए तो फिर इंसान अल्लाह की नाराजगी के खौफ से भी गुनाहों से वापस पलटेगा और नेकियों की तरफ रगबत करने लग जाएगा। नू भूल गए सारी बातों को, बेटा बेटा कल्ला के ये नबुवत का ताज मेरे सर से ना छिन जाए। तो अल्लाह ने क्या कहा, फरमा दिया गया कि नू हमारी जानिब से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सारी जमातों पर, और बहुत सी उम्मतें होंगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं, इन्हें इससे पहले आप जानते थे, और ना आपकी कौम, इसलिए कि आप सबर करते रहिए, यकीन मानिए कि इंजामे कार परहेजगारों के लिए है। तो अल्लाह के नबी कहानी सुनाते सुनाते अब अपनी कौम की तरफ आ गए, तो क्या पता चला कि स्टोरी टेलिंग इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग। जब तक स्टोरीज में से मॉरल्स ना लिए जाएं तो बात नहीं बनती। और किस तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का मामला पेश कर दिया, आपने मैंने भी यही करना है। आप देखिए कि जितना ज्यादा आप अल्लाह की तरफ जाएंगे उतने आप पर एतराजात भी होंगे, उतने आपके ऊपर नजरें भी लगेंगी। इसलिए अपने बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिए कि बेटा देखे मेरा तो ये मुकाम है, अब आप सोच लीजिए क्या आप मुझे बातें करवाना चाहते हैं। बेटियों के कपड़े को देखिए, लोग आपको नहीं कहेंगे बाहर दूसरों को कहेंगे। आपने देखे आने वालों के कपड़े, आपने देखा पढ़ाने वालों की बच्चियों के कपड़े, आपने देखा वो फलां क्या कर रहे थे उनका बेटा, तो फिर आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए। शुक्र कीजिए, ये है इन्नस सलाती व नुसुकी व महया या ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि लोग आपको भी बड़ा गुनाहों से पाक नेक फरिश्ता सिफत देखना चाहता है, और आपके शौहर को और आपकी बीवी को भी और आपके घर वालों को भी। तो इसके लिए दुआएं भी मांगिए, अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह मेरी यही औलाद मुझे देना आखरत में। अब एकदम डाउट आता है कैसे, अल्लाह इनकी इसलाह करके देना, अल्लाह ताला मुझे यही शौहर चाहिए, बस इनकी ये फुलां फुलां आते जरा निकाल देना। क्या फायदा उस जन्नत में जाने का जहाँ बीवी या बच्चे ना हो, जहाँ शौहर ना पहुंचे। तो अल्लाह ताला के रास्ते में निकलते वक्त दुआएं बहुत होती हैं, और जितना ज्यादा इंसान इस पे गौर व फिक्र करता जाए अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान करेगा। देखिएगा जरा, गुनाहों के फितने की संगीनी 44 से 49 के अंदर कैसे अल्लाह ताला ने नबी को और उसकी बीवी और उसके बेटे को हमारे सामने एक सिंबल बनाकर पेश कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम है और दूसरी तरफ बीवी भी है और बेटा भी है। यहाँ तो बेटे की कहानी है ना, तो सूरह तहरीम में हम पढ़ेंगे इनकी बीवी का भी तस्कर है और भी जगह पे आएगा। नूह अलैहिस्सलाम बेहतरीन शौहर थे, आइडियल बाप थे, बेहतरीन दाई दीन थे। इसके बावजूद देखिए कि बीवी गुमराह हुई, बेटा नाकाम हुआ, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो क्या सीखा? बुरा माहौल कुफर जैसे गुनाह तक भी ले जाता है। शौहर और बाप वक्त का नबी ही क्यों ना हो, फायदा नहीं देता जब तक लेने वाले में फायदा लेने की चाहत नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है 4833, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किस से दोस्ती कर रहा है। अल मरु अला दीनी खलील ही। तो अल्लाह ताला ने नूह के बेटे को मिसाल बना दिया। अल्लाह करे इस मिसाल को सुनने के बाद अब किसी का बच्चा कुफर में और बुराई में ना डूबे। इसके बाद अब तरतीबे जमानी के साथ किस्से आएंगे बाकी अम्बिया कराम के भी। तो उसके बाद अब दूसरे नबी यानी हजरत नूह के साथ जो लोग बचे थे 70 से 80, वक्त के साथ साथ फिर उनकी नस्लों में जब बिगाड़ आया तो फिर अल्लाह ने उन बिगड़े हुए लोगों की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वइला आद अखाहुम हूदा, और कौम याद की तरफ इनके भाई हूद को हमने भेजा। उसने कहा, किसने कहा? नबी ने कहा। उन्होंने कहा, मेरी कौम वालों भी बिल्कुल, आप जो बातें हम कर चुके हैं ना, अब आप इसको एंजॉय करें। हर नबी का पैगाम एक है, कौम का रवैया एक है, सिर्फ बीच में हल्की फुल्की उनकी जो कह लीजिए आदात थी, या आप कह लीजिए कि हर कौम का गुनाह मुख्तलिफ था। और पारे में चूंकि गुनाह का मौजू है तो आप इस पे ज्यादा फोकस करिएगा सुनते हुए। और कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को हमने भेजा। हमने भेजा क्या कि खुद नहीं आते नबी। आज भी याद रखिए, अल्लाह जिसको चाहता है उसको दीन सिखाने के लिए और दीन की खिदमत के लिए भेजता है। इसने कहा, मेरी कौम वालों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बोहतान बांध रहे हो। शिर्क को बोहतान कहा गया। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इसकी कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? बेलौस होना है दाई दीन को। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपने गुनाहों की माफी तलब करो। सबसे पहले जो आ रहे हैं वो जाहिर गुनाह करके आते हैं, तो दाई दीन सबसे पहले पिछले गुनाहों की माफी की रग़बत दिलाए और इसकी जनाब पे तौबा करो ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे। यानी फवायद भी बताइए लोगों को गुनाह छोड़ने के, और तुम्हारी ताकत पर और ताकत यानी कुव्वत बढ़ा दे, और तुम जुर्म करते हुए रूगरदानी न करो। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई दलील तो लाया ही नहीं, और हम तो सिर्फ तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं है, और हम तुझ पर ईमान लाने वाले भी नहीं। इससे ज्यादा स्टबननेस और क्या होगी? जरा सोचिए, नबी बात कर रहे हैं या कौमी, और ये आगे से इतनी कठोर और दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि बात अकीदे से शुरू करनी चाहिए, बात कुर्बत के साथ हो, अपनायत का अंदाज हो, जो बुराई उस कौम में उसको पेश किया जाए। जैसे डॉक्टर जुकाम का इलाज करने की बजाय उसके पेट को ठीक करने की कोशिशों में लगे, तो दावत इल्लाह में ये सब कुछ लाजमी होता है। और ये जो लफ्ज़ बार बार इलाह का आता है ना, तो इलाह कहते हैं वो हस्ती जिसकी नाराजगी से इंसान दूर रहे, यानी इलाह को आप नाराज कर नहीं सकते। और इसे ये भी पता चलता है कि मुबल्लिग को पीपल कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, तारीफ तनकीद से ऊपर उठकर चलते जाएं। सारी दुनिया आपकी तारीफें कर ले, सारी दुनिया आपको सुनने लग जाए और अल्लाह कबूल ना करे, तो क्या फायदा? किस काम की वो चीज, किस काम की वो तबलीग? तो इन सारी चीजों से ऊपर उठकर रहना सिखाया, और आज भी लोगों के गुनाहों पे उनको तौबा करना सिखाइए। और यकीन कीजिए कि आज हकीकत में हमें भी सच्ची पक्की इज्तमाई तौबा की ज़रूरत है। आज हम इन ठंडे आरामदेह घरों में बैठे हैं, कभी होमलेस लोगों के लिए दुआ तो कर दीजिए कि वो न जाने कहाँ बैठे होंगे इस वक्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसनद अहमद की रिवायत 5483, फुजाला बिन उबैद रावी हैं, बंदा इस वक्त तक अल्लाह के अजाब से अमन में रहता है जब तक अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता रहता है। तो आज मिल्लत इस्लामी और उम्मत मुस्लिमा को फितनों की यलगार में भी इज्तमाई तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, और वबाओं के जाने के लिए भी। अब कौम का जवाब सुनिए, वही भोंडा जवाब जो पिछली कौमें भी दे चुकी हैं अपने अपने नबियों को, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपट्टे में आ गया है। यानी ये भी एक बहुत ही बुरी सोच होती है कौमों की, कि आपके ऊपर नऊज बिल्ला हमारे बुतों ने कुछ असर कर दिया है, क्योंकि आप हर वक्त जो उनको बुरा भला कहते हैं, आज भी बाज लोग यही समझते हैं कि ये बुरा भला कहते हैं तो फलां होगा और ये मामला और वो मामला। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं अल्लाह के सिवा इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अच्छा, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। ये जुमला कौन बोलता है? जिसको यकीन है कि हस्बी अल्लाह, मेरा रब मुझे काफ़ी है, अगर सारा ज़माना भी दुश्मन बन जाए तो रब मुझे बचाने के लिए काफ़ी है। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर है, जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है। जितने भी पांव धरने वाले हैं सब की पेशानी वही थामे हुए है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। कॉन्फिडेंस के साथ तबलीग किया करें। ढीली बातें करने वालों को हक नहीं है तबलीग करने का। लोगों को और ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करके आते हैं। जैसे वो ड्राइवर जिसने नया नया सीखा हो, वो झटके देगा तो लोग हर वक्त और ही खतरे में होंगे। बस अगर तुम रूगरदानी करो तो करो। मैं तुम्हें वो पैगाम पहुंचा चुका जो देखकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मुकाम और लोगों को कर देगा। देख लें, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, ये पैगाम है, और तुम इसका कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज पर निगेहबान है। तो क्या सीखा? 40 से 57 में बेटे के हक में हजरत नूह की सिफारिश कबूल नहीं हुई, लेकिन कोई नाराजगी नहीं। हमारी तो एक बात ना मानी जाए हम लूट जाते हैं कि अल्लाह ताला आप तो पता नहीं क्या है, मैं इतना तो पढ़ा रही हूँ तो फिर आप मेरी भी तो माने। नौजबिला हम ऐसे समझते हैं जैसे अब अल्लाह ताला हमारे लिए मजबूर है कि भाई अब इनको अगर ना इनकी बात ना मानी तो फिर क्या होगा, और वो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। फिर इस तरह तौबा और इस्तगफार की बरकतें, तवहमात का शिकार लोगों का अकीदा, फौतशुदा बुजुर्गों की शान में गुस्ताही तो ना की तो नाकाम हो जाएंगे, और अल्लाह के मामले में जो मर्जी कहते सुनते रहे इस पे कुछ खौफ नहीं आता। और हजरत हूद का जवाब कि तुम्हारे माबूदों का माबूद भी एक अल्लाह है, यानी अबाव ऑल सुपर पावर्स देर इज अ सुप्रीम पावर। याद रखिए, अपने वक्त की सुपर पावर्स की कहानियां हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ना किसी से दबा ना किसी से डरा, एक को उधर डुबोया, अब दूसरे के साथ क्या होने लगे? आइए देखिए आयत 58 में, वलम्मा जामरूना नज्जैना हूदं वल्लज़ीना आमनू माहु बिरहमतिन मिन्ना। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने खुद को और इनके साथियों, कौन से मुसलमान साथियों को, अपनी खास रहमत से निजात अता फरमाई और हमने इन सब को सख्त अजाब से बचा लिया। ये थी कौम आद जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और इसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान की हुक्म की ताबेदारी की। सरकशी का जवाब हलाकत। तो कौम आद के कौन से गुनाह थे? देखिएगा, तीन बड़े गुनाह थे 58-59 आयत में। देखे, अल्लाह की आयात का इनकार, पूछिए आज भी है। रसूलों की नाफरमानी है आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। सरकश बने और नाफरमान हुए और उनकी पैरवी भी की, बिगड़े हुओं की पैरवी की। क्या आज उम्मत मुस्लिमा में ये गुनाह है? तो उनका नतीजा तो दुनिया और आखरत की रहमतों से दूरी थी। आज आप और मैं खुद को नंबर दे लीजिए। दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई और क्यामत के दिन भी। देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफर किया, हूद की कौम आद पर दूरी हो। नबी क्या कह गए और कौम ने क्या अपने लिए चूज किया? तीसरी कौम तरतीबे जमानी के एतबार से जो अल्लाह ने भेजी, वैला समूद आखा हुम सालेहा, और कौम समूद की तरफ इनके भाई यानी दीनी भाई, हम मिशन भाई कह लीजिए जो भी उनका कॉज था, कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, इसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और इसी ने इस जमीन में तुमको बसाया है, बस तुम इससे माफी तलब करो और इसकी तरफ रजू करो, बेशक मेरा रब करीब और दुआओं का कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा सवाल है, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। ये भी बड़ी बात है, अक्सर लोगों को दीन पे आने के बाद ये जुमला सुनना पड़ता है, आपने तो हमारी उम्मीदों पे पानी डाल दिया। बेटा, हमने तो आपको क्या सोच के पाला था, पढ़ाया था, और आप क्या ये तबलीग और दीन वाले बन गए, और आप तो पता नहीं क्या करेंगे। ये सोच थी, क्या तू हमें इनकी इबादत से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आए? हमें तो इस दीन में हैरान कुन शक है जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। हैरत होती थी लोगों को, क्योंकि याद रखिए जब खूब ना खूब हो जाए तो यही होता है कि कौमों का जमीर पलट जाता है। आज भी तो देखिए ना, सच्चा दीन पेश करिए, फिर देखिए जरा आपके रिश्तेदार कौन थे, और लोग आपकी साथ नस्लों को जाके बुरा भला कहकर आ जाएंगे। और वो दीन जो रस्मी रिवाजी पंप एंड शो वाला है वो हर एक को पता है। जवाब सुनिए, उन्होंने जवाब दिया, मेरी कौम के लोगों जरा बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और इसने मुझे अपने पास की रहमत अता की हो, फिर अगर मैंने इसकी नाफरमानी कर दी तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे? तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। सोचिए, नाफरमानी, गुनाह। अल्लाह के नबी भी गुनाह से डरते थे, आज मैं आप गुनाह से कितना डरते हैं इस पर ये सवाल है। अरे मेरी कौम वालों, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती भी छोड़ दो और इसे किसी तरह की ईजा न पहुंचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। खुद मांगी चीज नेमत लोग मांगते हैं, फिर उसकी कदर नहीं कर पाते तो नेमत छिन जाती है। यही मिसाल है इधर इस कौम की। फिर भी लोगों ने इस ऊँटनी के पाँव काट डाले। इस पर सोले ने कहा, अच्छा तुम अपने घरों में 3 दिन तो रह लो, ये वादा झूठा नहीं, यानी 3 दिन के बाद अजाब आएगा। फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालेह को और इन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा रब इंतहाई यानी नहायत तवाना और गालिब है। और जालिमों को बड़े जोर की चिंगार ने आ दबोचा, फिर वो अपने घरों में उंधे पड़े रह गए, यानी वही घर जहां मस्तियां थी अल्लाह ने वहां झुका दिया इनको, ऐसे कि गोया वो कभी वहां आबाद ही ना थे, यानी नाम मिट गया, नसीम मनसिया हो गए। आगा रहो कि कौम समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुन लो इन समूदियों पर फुटकार है। तो क्या थी कौम साले? देखिएगा, साले अलैहि सलाम की कौम को जो मोजज़ा दिया गया था वो नाकतुल्ला थी, एक ऊँटनी थी जो उनकी फरमाइश पे मिली, बाद में उसी को उन्होंने कत्ल भी कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कुरान था, है और क़यामत तक रहेगा। दोनों उम्मतों का यकसां जुर्म है। तकजीब 68 आयत तक में देखा आपने, तो क्या पता चला यहाँ कौन सा गुनाह निकला इस कौम के नाम पे? मोजे की कदर ना की और गुनाहों के फितने में मुबतला हो गए। अब अगला किस्सा है हजरत लूत और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे और सलाम कहा, यानी फरिश्ते भी सलाम करते हैं, हेलो हाय बाय नहीं करते। उन्होंने जवाब में सलाम दिया और बगैर किसी ताखीर के बछड़े का भुना हुआ गोश्त ले आए। मेहमान नवाजी, अच्छा अदब है, पूछते ही ना रह जाए क्या खाएंगे, खाना तो खा कर आए, चाय का तो वक्त नहीं, ठंडे का तो मौसम नहीं, ये बुखल होता है। बाज़ लोग फितरी तौर पे कल्चरली भी और अपने गांव बिरादरी और शहर की वजह से भी या तो बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं या नहीं। आज के बाद आपने बी हॉस्पिटेबल बिकॉज ऑफ हजरत इब्राहिम, उनकी सुन्नत समझकर मेहमान की अच्छी खातर कीजिए। अब जो देखा कि इनके तो हाथ भी इनकी तरफ नहीं पहुंच रहे, तो इनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में इनसे खौफ खाने लगे, खौफ करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौमे लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। इनकी बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी, तो हमने उसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है, मैं खुद बुढ़िया और ये मेरे खावन भी बड़ी उम्र के हैं। ये यकीनन बड़ी अजीब बात है, यानी हैरत अल्लाह की कुदरत में नहीं हुई, इंसानी असबाब पे हुई। फरिश्तों ने कहा, क्या तू तो अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है? तुम पर है इस घर के लोगों, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हो। ये है अला बरकत जो हम दुरूद शरीफ में पढ़ते हैं ना, कमा बारक ताला इब्राहिम, ये उसका जिक्र है कुरान में। बेशक अल्लाह ताला हमदो सना का सजावार और बड़ी शान वाला है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डर खौफ जाता रहा और उन्हें बिशारत भी पहुंच चुकी, तो हमसे कौमे लूत के बारे में कहने लगे। यकीनन इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। मांग लीजिए रमजान की इन घड़ियों में अपने लिए भी ये 3 खूबियां। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म आ पहुंचा है और इस पर ना टाले जाने वाला सब जरूर आने वाला है। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो वो इनकी वजह से बहुत गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। यानी नबी कभी नहीं चाहते कि कौमें तबाहो बर्बाद हों, लेकिन जब कौमें ठान लें तो फिर वो उनको बचा भी नहीं सकते। तो क्या देखा है 58 से 76 में, कौमें आद पर अल्लाह का अजाब आया, कौमें साले की कौम का अकीदा तौहीद पर शक था, जालिम मौजों को देखकर भी मान नहीं लाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की बिशारत और जालिम कौम के लिए नबी की सिफारिश भी कबूल नहीं की जाती। अल्लाह करे हमारी कौम को भी ये बात समझ आ जाए। और उनकी कौम दौड़ती हुई इनके पास आ पहुंची, वो तो पहले ही बदकारियों में मुबतला थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौम के लोगो, ये हैं मेरी बेटियां जो तुम्हारे लिए बहुत पाकीजा हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न करो। क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं, यानी हजरत लूत पे एक मर्द भी ईमान नहीं लाया, क्योंकि मर्दों को बुराई से रोकते थे। उन्होंने जवाब दिया कि तू बखूबी जानता है हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक नहीं, यानी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन, और तू हमारी असल चाहत से बखूबी वाकिफ है, क्या कि वी वॉन्ट टू बी लेस्बियन और वी वॉन्ट टू बी होमोसेक्शुअल, हम तो मर्दों से ख्वाहिश पूरी करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती, या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ लेता। अब फरिश्तों ने कहा, लूत हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, नामुमकिन है कि ये तुझ तक पहुंच जाए, बस तो अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रहे निकल जा। यानी अब हजरत लूत को हिजरत का हुक्म मिल गया। तुम में से किसी को मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए बजुस तेरी बीवी के, इसलिए किसे भी वही पहुंचने वाला है जो इन सब को पहुंचेगा। बीवी की हमदर्दियां कौम से थी कि गैर घराने से थी। सारी जिंदगी बाज औरतें शौहर के घर की खैर लेती रहती हैं, लेकिन मैके और ससुराल का फर्क नहीं समझ पाती। यकीनन इनके वादे का वक्त सुबह का है, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं है? फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, फलम मजा अमरुना जालना लिया हासा फिलहा, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा हमने इस बस्ती को जेरो जबर कर दिया और ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे। पत्थरों की बारिश हुई थी, स्टोन रेन, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो इन जालिमों से कुछ भी दूर न थे। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या हुआ? कौम ने जब बहुत सताया तो कहा, लैस मिनकुम रजुलुर रशीद, बहुत ही नबियों के लिए ये तकलीफ वक्त होता। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी गुनाहों के फितने में मुबतला, खानदान वालों के साथ हमदर्दियां और शौहर के मिशन से मुत्तफिक नहीं थी। क्या पता चला कि शौहर लूत अलैहिस्सलाम जैसे नेक क्यों ना हो जाएं, तब तक बीवी खुद नेक नहीं होगी, कल शौहर काम नहीं आएंगे। तो गुनाहों की दलदल में एक ही मर्द मोमिन और उनका नाम था लूत अलैहिस्सलाम। अफसोस की बात है कि वो फितना जिससे सहाबे कराम के बकौल कोई मानता ना अगर कुरान में ये किस्सा ना होता, इतना गैर फितरी काम, लेकिन आज के फितनों में मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही बड़ा फितना जो हमारी नस्लों के सरों पे तलवार बन के लटका हुआ है, वो है होमोसेक्सुअलिटी। तो आइए जरा कुछ उसकी पेशबंदियां लेते जाएं और आगे भी जहां जहां मौका बनता जाएगा इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा इस पे जिक्र करेंगे और अमली चीजों को हम इसमें लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी नस्लों की नस्लों को भी इस गंदगी से और इस खराबी से बचाए। तो हम जिन्स परस्ती का फितना, जिसको कौमे लूत कहते हैं, लूथियत भी कहते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए? दूसरों के घरों में बच्चों को सोने की इजाजत ना दीजिए, चाहे वो नानी और खाला और फुफ्फो और चचा का घर क्यों ना हो। बच्चों में ईमान, तकवा और हलाल और हराम का शऊर बेदार कीजिए। बाहया और सातिर लिबास पहनाइए, खासतौर पर बेटियों को, क्योंकि घरों में भाई भी होते हैं, बाप भी होते हैं। नमाज और रोजों की पाबंदी कीजिए। बिस्तरों को अलग कर दीजिए बच्चों के, एक लिहाफ के अंदर दो बच्चे नहीं सोएंगे, यानी डबल क्विल्ट को सिंगल्स में बदलिए। बच्चों को अकेला मत छोड़िए, अनअटेंडेड न छोड़िए। बच्चों के माहौल पर कड़ी नजर रखिए, बच्चे कहाँ मसरूफ हैं चेक करते रहिए। बाज दफा उनके गैजेट्स भी इसके लिए मददगार साबित होते हैं। मासूम बच्चों के हाथ में आप जो पकड़ा दें वो तो फिर बगैर समझ के उसको इस्तेमाल करेंगे। अगली कौम है कौम मदियन, कौम शुएब, जिसका इशू मनी मैटर्स का था, तो एक गुनाहों की किस्म माली मामलात की। वइला मद जनाखा खुम शुएबा, और हमने मदियन वालों की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, मेरी कौम, आपको नबियों की तड़प महसूस हो रही है, दर्द उनका, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम नाप तोल में भी कमी ना करो। मैं तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ, यानी अच्छे खाते पीते हो, फिर इतनी सी डंडी मारकर क्यों हलाल को हराम में ढालते हो? आज भी यही पैगाम है लोगों के लिए, इतना हलाल है तो उसके लिए 1-2% को छोड़ दीजिए। और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का खौफ है। ऐ मेरी कौम, नाप तोल में नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी करो, लोगों को इनकी चीजें कम ना दो और जमीन में फसाद और खराबी ना मचाओ। अल्लाह ताला का हलाल किया व जो बच रहे तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, यानी हलाल थोड़ा सा भी है ना उसमें बरकत ज्यादा है। अगर तुम ईमान वाले हो मैं तुम पर कुछ निगेबान यानी दारोगा तो नहीं। उन्होंने जवाब दिया, अब जरा सुनिए ताने जो मिल रहे हैं, और हर दौर में ये ताने मिलेंगे जब आप लोगों से हराम छुड़ाना चाहेंगे। ऐ शुएब, क्या तेरी सलात यानी तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है? क्या हम अपने बाप दादाओं के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें इसका करना भी छोड़ दें? तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है, यानी थर्ड क्लास स्टाइल ऑफ टॉकिंग है ये, ताने दिए जा रहे मुंह पे करके। है मेरी कौम देखो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिए हुए हूँ और इसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोजी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारे खिलाफ करके खुद इस चीज की तरफ झुक जाऊं जिससे तुम्हें रोक रहा हूँ। मेरा इरादा तो अपनी ताकतवर इसलाह करने का ही है, यानी जितनी मेरे में हिम्मत है मैं तुम्हारी इसलाह की कोशिश करता रहूंगा। मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, इसी पर मेरा भरोसा है और इसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। नबी का अकीदा क्या है और फॉलोअर्स का क्या बन गया? और ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरी मुखालफती नजाबों का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह और कौम हूद और सालेह को पहुंच चुके। यानी अपने से पहले की जिक्र है, कुछ कौमें देखिए हजरत इब्राहिम के दौर से पहले की हैं कुछ बाद की, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर ही नहीं, यानी अभी कुछ अरसा पहले तो उनका दौर गुजरा। तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो और इसकी तरफ तवज्जो करो, यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी करने वाला और बहुत मोहब्बत फरमाने वाला है। उन्होंने कहा शुएब तेरी अक्सर बातें तुम्हारी समझ में ही नहीं आती, ये भी एक तुम्हारा स्टाइल नहीं मिलता, तुम बहुत मुश्किल बातें करते हो, पीछे करो इसको। आज भी जब मानना ना हो तो लोग यही सोचते हैं, और हम तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं, वही ताना। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे संसार कर देते और हम तुझे कोई हैसियत वाली हस्ती नहीं गिनते। कभी यकीन कर एक नबी के जगह पे अपना नाम लिखिए और ये सारे ताने दिल पे लेकर देखिए तो पता लग जाएगा कि अल्लाह के लिए ये काम करते हैं या गैरों के लिए। उन्होंने जवाब दिया मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा अजीज हैं कि तुमने उसे पसे पोछ डाल दिया? यकीनन मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो सबको घेरे हुए है। ये भी एक कौमों का हाल होता है कि कौम बिरादरी के नाम पे तो किसी को छोड़ देंगे लेकिन अल्लाह के नाम पे नहीं। ऐ मेरी कौम के लोगों, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ, तुम्हें अन करीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर दे और कौन है जो झूठा है। अल्लाह हमें भी इतना इखलास दे कि हम नबियों की तरह खैर ख्वाह बंदे ही रहें। तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजर हूँ जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा। अब ये कौम कटेगी, अब देखिए एक से एक बड़ी ताकत ट्रैश कैन में जाती हुई दिख रही है। जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा हमने शुएब को और इनके साथ तमाम मोमिनों को अपनी खास रहमत से निजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंघाड़ के अजाब ने धर दबोचा जिससे वो अपने घरों में उन्दे पड़े हुए हो गए, यानी उनके घर उनके कब्रिस्तान बन गए, उनकी लाशें अपने घरों में ही गिर गईं, गोया कि वो इन घरों में कभी बसे ही न थे। आगाह रहो मदियन के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसी दूरी समूत को हुई, और यकीनन हम ही ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और रोशन दलीलों के साथ भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, फिर भी इन लोगों ने फिरौन के अहकाम की पैरवी की और फिरौन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं। क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं इसको, और वो खुद को क्या कहता था? तरीकतकुमुल मुस्ला, आगे हम पढ़ेंगे सूरत तौहा में, और अना रब्बुकुमुल आला का दावेदार था। तो याद रखे बड़ी बड़ी कौमें अपने दावे तो बड़े करती हैं लेकिन अल्लाह ताला असल में उन लोगों को दिखाता है कि असल ताकत अल्लाह की है। और फिरौन जो दुनिया में बड़ा बना था, क्यामत के दिन क्या होगा? वो क्यामत के दिन अपनी कौम का पेशरो होकर इन सब को दोजख में जा खड़ा करेगा। वो बहुत ही बुरा घाट है जिस पर ला खड़े किए जाएंगे। इन पर इस दुनिया में भी लानत चिपका दी गई और क्यामत के दिन भी बुरा इनाम है जो दिया गया। बस्तियों की ये बास खबरें जिन्हें हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं, और इनमें से बास तो मौजूद हैं और बास की फसलें कट गई हैं। कहानी सुनाते सुनाते अल्लाह के नबी की तरफ बात आ गई, इतनी इन कौमों की तबाहियों की बातें, बस्तियों की बातें, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि खुद उन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया और इन्हें इनके माबूदों ने कोई फायदा न पहुंचाया। देख रहे हैं ना, हर कौम तबाह हुई, किसी का माबूद उनको बचाने ना आया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, बल्कि और इनका नुकसान ही उन्होंने बढ़ाया। तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है जबकि वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है, बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली और नहायत सख्त है। तो क्या पता चला, अल्लाह फिर सबको इकट्ठा पकड़ लेता है, फिर हिसाब किताब आसान हो जाता है कि पकड़ो और सारे दुनिया को बंद करके रख दो। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशान इबरत है जो क्यामत के दिन के अजाब से डरते हैं, वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे और वो दिन जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। इसे हम जो मुलतवी करते हैं वो सिर्फ एक मुद्दत तक के लिए, जिस दिन वो आ जाएगी मजाल ना होगी कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी बात कर ले। सो इनमें कोई बदबख्त होगा और कोई नेकबख्त, कौन होगा बदबख्त गुनाहों में मुबतला, और नेक बख्त होगा नेकियों वाला, गुनाहों से बचने वाला। लेकिन जो बदबख्त हुए वो दोजख में होंगे, वहाँ चीखेंगे चिल्लाएंगे, वो वहाँ हमेशा रहने वाले हैं जब तक कि आसमान और ज़मीन बरकरार रहें, सिवाय इस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे। यकीनन तेरा रब जो कुछ चाहे कर गुजरता है। लेकिन जो लोग नेक बख्त किए गए वो जन्नत में होंगे, जहाँ हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहे, मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे। ये बे इंतहा बख्शिश है। तो क्या सीखा? दो तरह के लोग दुनिया में, कुछ काफिर थे कुछ मोमिन थे। तो आखरत में दो तरह के अंजाम, काफिर बदबख्त और शकी, और मोमिन खुशबख्त और सईद। हमारा क्या गोल है इन आयतों को सुनने के बाद? गुनाहों के फितने में मुबतला नहीं होना, मोमिन और सईद बनना है। अब सूरत का खात्मा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में चंद बाल सफ़ेद देखे, या दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद देखे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बाल कैसे सफ़ेद हो गए? तो आपने फरमाया, शई बतनी हूदुन व खवातुहम, मुझे सूरत हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। आखिर में यह हदीस इसलिए सुनाई है कि आप उसकी वजह जान लें। इतनी कौमों की हलाकत के किस्से सुनकर अल्लाह के नबी को गम लग गया कि आप ये अरब वाले और मुशरिकीन भी ना तबाह हो जाएं, मक्का वाले। आज हमें भी ये तड़प है, इसलिए अब आखिरी आयतों को बड़े दर्द से सुनिएगा। आप इन चीज़ों से शक और शुबे में न रहें जिन्हें ये लोग पूछ रहे हैं। इनकी पूजा तो इस तरह है जिस तरह इनके बाप दादों की इससे पहले थी। हम इन सब को इनका पूरा पूरा हिस्सा बगैर किसी कमी के देने वाले हैं। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फिर इसमें इख्तलाफ किया गया। अगर पहले ही आपके रब की बात सादर ना हो गई होती तो यकीनन इनका फैसला कर दिया जाता। इन्हें तो इसमें सख्त शुबा है। यकीनन इनमें से हर एक जब इनके रूबरू जाएगा तो आपका रब इसके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बेशक वो जो कर रहे हैं इनसे वो बाखबर है। बस आप जमे रहिए। ये है क्रीम ऑफ दी सूरा, फस्तकीम कमा उमिरता। आपके मेरे लिए भी यही पैगाम है। इर्द गिर्द के फितने हैं, आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, औलाद के गम हैं, शोहरों बीवियों के मसले हैं। फस्तकीम कमा उमिरता, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया। मुफस्सरीन कहते हैं ये है वो आयत जिस पर अल्लाह के नबी के बाल सफेद हुए। और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं, खबरदार आप हद से न बढ़ना। अल्लाह ताला आपके तमाम आमाल को देखने वाला है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज न झुकना, वरना तुम्हें भी दोजख की आग लग जाएगी, और अल्लाह के सिवा और कोई तुम्हारा मददगार न खड़ा हो सकेगा, और न तुम मदद दिए जाओगे। दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रखिए। यह है वायद जिस पे आपको शुरू में फितना बताया गया था, नमाजों को डिले करना। और रात की कई सातों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। तो गुनाहों में फलाह का रास्ता क्या है? फस्तकीम कमा उमिरता, 109 से 114 में देखिए। इस्तकामत फिद्दीन इख्तियार करनी है, हद से तजावुज नहीं करना, यानी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, बुरे लोगों और गुनाहों की तरफ माइल नहीं होना, सब्र और नमाज से मदद लेनी है, नेकियों को बुराइयों से दफा करना है, गुनाहगारों में बायसे खैर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले बनना, यानी खैर दीजिए लोगों को, खैर दीजिए। अब सवाल है कि यहाँ इस्तकामत से क्या मुराद है? तो नोट कीजिए कि इस्तकामत के पांच दर्जे हैं। अकायद में इस्तकामत, इबादात में, मामलात में, अखलाक में, और कस्बे मुआश में, यानी मुआशरत में। मुराद यह है कि लोगों के प्रेशर में आके ना तो शिर्क में आना है, ना इबादात में कमी करनी है, ना मामलात को बिगाड़ना है, ना अखलाक बिगाड़ना है, और लोगों के साथ रहन सहन में। बाज़ लोग कहते हैं बस फिर मेरे से सब्र नहीं हुआ, फिर मैं भी बोल उठी तो ये इस्तकामत छूटी। मेहमान आ गए थे, नमाज नहीं पढ़ी, आपकी इबादत की इस्तकामत छूट गई। हाँ फिर दोस्त है, उसकी खुशी के लिए मुझे उस राखी बंधन में तो जाना था, इस्तकामत छूट गई आपकी। अल्लाह में मरते दम तक इस्तकामत पे फाइज रखे। आप सब्र करते रहिए, यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। बस क्यों ना तुमसे पहले जमाने के लोगों में ऐसे अहले खैर हुए जो जमीन में फसाद फैलाने से रोकते, सिवाय इन चंद के जिन्हें हमने इनमें से निजात दी थी। जालिम लोग तो इस चीज के पीछे पड़ गए जिस मैंने आसूदगी दी गई थी, और वो गुनाहगार थे। यानी अक्सर कसरत माल लोगों में बिगाड़ का जरिया बनती है। आप का रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के लोग नेकुकार हों। अगर आपका परवरदिगार चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर एक गिरोह कर देता। वो तो बराबर इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे, सिवाय इनके जिन पर आप का रब रहम फरमाए। इन्हें तो इसलिए पैदा किया है, और आपके रब की ये बात पूरी है कि मैं जहन्नुम को जिन और इंसानों सबसे पुर करूंगा। कौन से? जो गुनाहों के फितने में मुलव्वस हो गए। रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। आपका भी दिल दुखी होता था ना अरबों के और मक्का वालों के आपके साथ मामले से, तो उस पर ये सारी कहानियां सुनाई गई आपको। आपके पास इस सूरत में भी हक पहुंच चुका जो नसीहत और वाज है मोमिनों के लिए। ईमान न लाने वालों से कह दीजिए कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ, हम भी अमल में मशगूल हैं, और तुम भी इंतजार करो, हम भी मुंतजर हैं। किस चीज के? कि अल्लाह ताला हक को गालिब कर दे। जमीनों और आसमानों का इल्म गैब अल्लाह ताला ही को है, तमाम मामलात का रुझू भी इसी की जानिब है। बस तुझे इसकी इबादत करनी चाहिए और इसी पे भरोसा रखना चाहिए, और जो कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह ताला इससे बेखबर नहीं। ये है कि दुख जमीन वाले देते हैं और तसल्लियां दिलासे आसमान से आते हैं, ये किसको मिलता है? इन लजीना कालू रबुनल्लास्तकाम वालों को। आप दीन पे जम जाएं, दीन सीखने पे, दीन सिखाने पे, दीन पे अमल करने में, इसके रास्ते में खिदमत में, देखिएगा आसमानों से आपकी बेगुनाही के इंशाअल्लाह ताला फैसले होंगे। तो क्या सीखा आखिरी आयतों में 100 से 123? हलाक होने वाली कौमों के अंजाम पर बसीरत अफरोज तबसरा था। कौन खुश नसीब है, कौन बद नसीब, ये फैसला फिर क्यामत में होगा। आप लोगों की अच्छी चीजों को देखकर ये जज नहीं कर सकते। अल्लाह के कलाम से हर दौर में इख्तलाफ किया गया। मुश्किल हालात में अहले ईमान के लिए हिदायत है, और हर दौर में हक से इख्तलाफ करने वाले रहेंगे, थे हैं रहेंगे। चलिए, पहले थी सूरत यूनुस नबी के नाम पे, फिर थी सूरत हूद नबी के नाम पे, तीसरी मुस्तकिल सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे। कभी इस तरह गौर करते हैं आप कुरान में कभी? बाय द वे, जो आपको दौरे कुरान में मौका मिलता है क्विकली पढ़ने पे, तो सूरत यूसुफ क्या है इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी हम इसको तर्जमे की हद तक ज्यादा थोड़े थोड़े अमल के नुकतों से लेंगे, कुछ चीजें कल के पारे के शुरू में, और एक चीज जो आपको होमवर्क दूंगी, सूरत यूसुफ की तफसीर हमारे पास 3 दफा तो एक्स्ट्रा, और हर सेट में शायद 10-12 दफा मौजूद है। अभी रिसेंटली हमने पिछले सालों में यूथ के साथ ये की, बहुत मुख्तसर से और टू दी पॉइंट अंदाज में, बच्चों बच्चियों के लिए वो, और आपके लिए हमारे पास एक और सेट मौजूद है जो तरबियत इत्फाल की रोशनी में कोर्स हुआ था, पाकिस्तान से ये कोर्स हुआ था आज से चंद साल पहले। वो मिल जाए दोनों, वो सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप तफसीर के किसी सेट में से। अभी चलते हैं किस्से को कहानी की तरह लेते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। सूरत यूसुफ हजरत यूसुफ का एक किस्सा है जिसको अहसनुल कसस कहा जा रहा है। हजरत यूसुफ जाहरी तौर पे बहुत हसीन थे, ये हुसन फितने की वजह बना। आज भी बहुत सारी बच्चियों का हुसन उनके लिए फितना के फिर आजमाइश बनता है, और फिर होती रहती है सारी जिंदगी उसको ना छुपाने की सजा में। इसी तरह यूसुफ अलैहि सलाम बातनी हुसन का मुरक्का थे, बाकिरदार थे, साबिर थे, मुत्तकी थे, मोहसिन थे, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस सूरत में। इसी तरह यूसुफ अलैहि सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से बहुत मुमासलत है, उसको भी देखेंगे। यानी आप भी कुएं में डाले गए, अल्लाह के नबी भी गार में डाले गए, यानी आप भी गारे सौर में रहे। तो इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत चीजें हम तफसीर में तफसील से देखते हैं। यूसुफ अलैहि सलाम की जिंदगी के नशेबो फराज को देखिए, अप्स एंड डाउन्स आपकी जिंदगी में आए। मसलन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी में बहुत खूबसूरतियां भी रखी और बजाहर बहुत खराबियां भी थी। ख्वाब देखा बहुत प्यारा, ताबीर उसकी बहुत अरसे के बाद देखी गई। फिर इसी तरह भाइयों के हसद का शिकार हुए, यानी उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया, हसद का भी शिकार होते हैं। फिर इसी तरह बाप की मोहब्बत से निकाल कर कुएं की गहराई में डाल दिए गए, यानी एक अच्छा दौर है तो दूसरा बुरा है। फिर कुएं से निकाले गए तो उसके बाद अजीज मिस्र के घर में बड़ी इज्जत से रखे गए, ये अच्छा दौर था। वहां से निकले तो उस औरत के सड्यूस किए जाने का शिकार हुए, तो उसके बाद बहुत सारी औरतों ने उनके साथ चाल चली और अल्लाह की गायबाना मदद हुई। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जेल में डाल दिए गए तो वहां से निकले तो उसके बाद मिस्र के वजीर खजाना बन गए। जुदाई और मिलाप की कहानियां हैं कि कब के बिछड़े कहाँ जाकर मिले वाली कैफियत। तकदीर और तदबीर का इनकी जिंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक है, कहीं कैद है तो कहीं रहाई है। और इसी तरह कहत और खुशकसाली वाली कौम को कैसे अपनी खिदमात पेश करते हैं, ये अगले पारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या पता चला कि कामयाबी और नाकामी का मेयार सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, आइए इन सारी चीज़ों की रोशनी में देखते हैं। ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस कुरान को अरबी जुबान में नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस वजह से कि हमने आपकी जानिब ये कुरान वही के जरिए नाजिल किया है। और यकीनन आप इससे पहले ला इल्मों में से थे। कौन से ला इल्म? व इन कुंत मिन कब्लिही लमिन अल गाफिलीन। आप इससे पहले बेखबरों में से थे। इस गफलत से मुराद बुरा मानी नहीं, अच्छा मानी है। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारों को और सूरज चांद को देखा है, वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। अनयूजुअल ख्वाब है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। आज के बाप होते कहते, जरा इसको फेसबुक पे डाल दो, सब देख ले, कितना प्यारा बच्चा मेरा, इतने अच्छे ख्वाब आ रहे हैं। तो याद रखिए, नेमतों को एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। और इसी तरह तुझे तेरा परवरदिगार बरगजीदा करेगा और तुझे मामला फहमी या ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा। और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों को भी, जैसे कि इसने पहले तेरे दादा और परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर अपनी नेमत दी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। ख्वाब का जिक्र है तो देखिएगा, ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। बुशरा, सच्चे ख्वाब होते हैं। अगर किसी को अच्छा ख्वाब आए तो शुक्र अदा कीजिए, सिर्फ मुखलिस लोगों को सुनाएं। इसी तरह नफसानी ख्वाब होते हैं, जो हदीस नफ्स हैं। दिन में जो बातें की वो रात में ख्वाब में आ गई। इम्तिहानों के दिनों में रात में भी पर्चे हल कर रहे होते हैं, तो ये अहम ख्याल आते हैं, इसको इग्नोर कीजिए। कुछ शैतानी ख्वाब होते हैं, जैसे नाइट मेयर्स वगैरह। तो औस बिला पढ़े, थुतकार दे, सदका दे, नफिल पढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि बुरा ख्वाब किसी को न बताएं। यकीनन यूसुफ और इनके भाइयों में दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बनिस्बत हमारे बाप को बहुत ज्यादा प्यारे हैं। हालांकि हम ताकतवर जमात हैं, कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सरी गलती में। यहाँ से आपको एक बादब औलाद और बेअदब औलाद का फर्क भी दिखेगा। बाज बच्चे बहुत ही बादब होते हैं और कुछ बेअदब। तो देखिएगा कि बादब बच्चे को अल्लाह कहाँ ले गया और बेअदब बच्चे भिखारी बन के खड़े हो जाएंगे। तो वालदैन और औलाद के बीच का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है। इधर औलाद को चाहिए वालदैन से अपनी बातें और ख्वाब शेयर करें, दोस्तों और बाहर वालों को ना बताएं। वालदैन को क्या चाहिए? बीच का गैप खत्म करें, सही तरबियत करें, बच्चों को वक्त दें। बच्चों के माँ बहन झगड़े की वजह शैतान को बनाए, यानी बच्चों तुम तो बड़े अच्छे हो पर शैतान तुमसे लड़ाई कराता है। ये जो तुम भाई से भाई लड़ते हो ना, ये शैतान लड़ाता है, उससे दूर रहो। इसी तरह वालदेन की कुछ गैर दानिश चीजें होती हैं, यानी गैर दानिशमंदी होती है, यानी गलत तरीका इख्तियार होता है। मसलन बच्चों के दरमियान मुवाजना करते हैं, वो अच्छा तुम बुरे, तुम तेज वो होशियार, वो ऐसा वो, ये कभी ना कीजिए। बच्चों के एक दूसरे के खिलाफ कभी ना कीजिए। गलत तरीके से सही बात को समझाना, ये भी एक बुरी बात है। ये ऐसी जैसे साफ चीज को गंदे कपड़े से साफ करने की कोशिश की जाए। और भाइयों का प्लान क्या था? इक्तुलु यूसुफ, यूसुफ को मार ही डालो या इसे किसी नामालूम जगह पर फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना। आज भी कई लोगों ने यही शॉर्टकट रखा हुआ है अपने लिए नेकियों का। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो यूं करो। क्या पता चला कि बहुत बुरों में कुछ कम बुरे भी होते हैं। उन्होंने कहा, अब्बा आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। इसको कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस, खुद ही पता है ना गलत तरीका है, इसीलिए कहते हैं आप हमें वाईफाई कोड क्यों नहीं देते, हम कोई गलत चीजें देखेंगे। तो याद रखिए, ये अंदाज ही बता रहा है कि गलत करने वाले हैं। कल आप इसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। अगर अल्लाह की हिफाजत में करते तो हो सकता है यूसुफ को नुकसान ना होता। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी इसे अगर भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही निकम्मे ही हुए, यानी ओवर कॉन्फिडेंट, और अपने आप को बड़ा कहना। आज भी ये उनके अंदर फख्र है कि हम बहुत हैं। फिर जब इसे ले चले और सबने मिल ठान लिया और इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, यानी प्लान क्या थे और बातें क्या खूबसूरत करते हैं। कितने लोग रिश्तेदारियों में यही कुछ करते हैं, दिल में कुछ होता है और ऊपर से कहते हैं मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई इस रिश्ते की, कोई नहीं होती। तो ये झूठ बोलना है। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि आप इन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देंगे कि वो जानते ही ना हो। ये सच्चे मोमिन के साथ हर दौर में रहेगा। आप हक में हैं, लोग आपके साथ कत्ल तक के भी इरादे कर लें, देखिएगा अल्लाह आपको इज्जत देगा। और ईशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए आ गए, टसवे बहाते हुए, झूठे आंसू, और कहने लगे, अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने इस बाप के पास छोड़ा, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात न मानेंगे, गो हम बिल्कुल ही सच्चे हों। देखिएगा कैसे ऊपर से आने वाला अंदाज है, यानी माँ बाप को डॉचिंग स्टाइल। और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। बाप ने कहा, यूं नहीं बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र जमील और उसका नतीजा देखिएगा। सब्र जमील उस सब्र को कहते हैं जिसमें शिकवा ना, ला शिकवा तफीहा, और ना शिकायत हो। अपने भी सब्र को जरा चेक कीजिए, जब गला थक जाता है रो धो के शिकवे करके कहते हैं अच्छा फिर अब सब्र करूंगा, नहीं, अपना गम सिर्फ अल्लाह को बताया जाए, ना पसंदीदा रद्द अमल से रुका जाए। इसका नतीजा है जन्नत, दर्जात की बुलंदी और मगफरत। तो ये सब्र आज के माँ बाप को भी करना पड़ेगा। अब मंजर पलटता है, हजरत यूसुफ के साथ उधर क्या हुआ, और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वालों को भेजा। इसने अपना डोल लटका दिया, कहने लगे, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उस दौर में लोग बिकते थे तो उनको लगा कि इस बच्चे को बेचेंगे। उन्होंने इसे माले तिजारत करार देकर छुपा लिया और अल्लाह ताला इससे बाखबर थे जो वो कर रहे थे, और उन्होंने इसे बहुत ही हल्की कीमत पर, गिनती के चंद दिरहमों पर बेच डाला। वो तो यूसुफ के बारे में बहुत ही बेरग़बत थे। आज भी ऐसा होता है, लाडों में पली हुई बच्चियां, माँ बाप की लाडलियां, बाज दफा अगले घर में जाकर जूतियों में रख दी जाती हैं। यूसुफ इतना प्यारा ख्वाब देख चुके थे, कल इनको नबी बनना था लेकिन आज डिग्रेड हो रहे हैं। तो आपको भी इस पे समझना है कि अगर जिंदगी में कभी कोई आपकी कदर ना करे तो अपने आप को मजीद बेहतर कीजिए। मिस्र वालों में से जिसने इसे खरीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन पर यूसुफ के कदम जमा दिए कि हम इसे ख्वाबों की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें, और अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। इंशाल्लाह इन सब पे नोट कल पारे के आगाज में दूंगी, अगले में। तो इंशाल्लाह आज हम पारा पूरा करते हैं और स्टोरी को स्टोरी में सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, बीच में गौर व फिक्र के नुक्ते तो आते ही रहेंगे। जब यूसुफ अलैहि सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए, हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेकुकारों को इसी तरह बदला देते हैं। इस औरत ने जिसके घर में यूसुफ अलैहि सलाम थे, यूसुफ अलैहि सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे, और दरवाजा बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। सीड्यूस कर रही है, ये है फितना बुराइयों का, और जब औरत का फितना आम होता है तो ये आम हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बना, वो मेरा रब है, मुझे इसने बहुत अच्छी तरह रखा, बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। इस औरत ने यूसुफ की तरफ का कसद किया और यूसुफ इसका कसद जन इरादा करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूं ही हुआ कि हम इससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और इस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींच कर फाड़ डाला, और दरवाजे के पास इसका शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस इसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। अभी क्या कह रही थी, मर मिट रही है, और अब शौहर को देखकर कह रही इसको कैद कर दो। लिखिए, लस्ट पे मबनी मोहब्बतें ऐसी होती हैं। जवानी के नशे में कुछ बच्चे इसको मोहब्बत समझते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है या करता है, तो वो मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ लस्ट और एक चस्का है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फिसला रही थी, और औरत के कबीले के ही एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की तरफ से फाड़ा गया हो तो औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। खामत ने जो देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीठ की तरफ से यानी पीछे से फाड़ा गया है, तो साफ कह दिया, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। बस औरतें माइंड करती हैं इस जुमले को सुनकर, तो देखिए ये अल्लाह का जुमला नहीं है, ये अजीज मिस्र का जुमला है जो अपनी बीवी के बारे में कह रहा है। यूसुफ, अब इस बात को आती जाती करो, और ए औरत, तो अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। तो देखिएगा, गुनाहों का फितना जब औरत के फितने में ढलता है तो माहौल बुरा हो जाता है, और ये कब होता है, जब बेहयाई, बदकारी, हम जिंस परस्ती और जिनाम हो जाए, औरतें ख्वाह मर्दों को बुराई की दावतें देती फिरें। बचपन में वालदैन की सही तरबियत जवानी में औलाद को बिगड़ने नहीं देती, जैसे यूसुफ नहीं बिगड़े। नामहरम लोगों से तन्हाई में हरगिज न मिलिए, फितनों में पड़ने की बजाय तकवा में इजाफा कीजिए और नफ्स को दबाइए। ये करेंगे तो इंशाल्लाह इन फितनों से बचेंगे। एक रिवायत लीजिएगा मुस्नद अहमद की 10042, मैंने अपने बाद वालों में यानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने अपने बाद लोगों में कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो माँ सिवाय औरतों के। हजरत उसामा से रिवायत पहुंची तो आज देखिए औरत कहाँ नहीं है, सरों पे तो नाचती हुई औरतें हैं, कानों पे और बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे। अल्लाह ताला हमारी आंखों दिल दिमाग को पाक कर दे। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने ही गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। बातें, गॉसिप, इवनिंग बुलेटिन्स, न्यूज़पेपर्स, किटी पार्टीज में यही कुछ होता है। इसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। इसने जब इनकी इस पुरफरेब गीबत का हाल सुना तो इन्हें बुलवा भेजा और इनके लिए एक मजलिस मुरतब की और इनमें से हर एक को छुरी दी। यानी होशियार औरत ही शर्मिंदा नहीं हुई कि मेरी तो बदनामी हो रही है, बल्कि अब कहती है आओ जरा तुम्हें भी दिखाती हूँ। और आज भी बुरे दोस्तें ऐसा ही करती हैं, अपनी सीधी सादी भोली वाली दोस्तों को गुनाहों में खींचने के लिए। और काया यूसुफ इनके सामने चले आओ, इन औरतों ने जब इसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जुबानों से निकल गया कि हाशा लिल्ला, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही हैं जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी, है कोई शर्मिंदगी इसके दिल में अपने गुनाह पे? तो याद रखिए नदमु तौबा। तो जब बंदा गुनाह पे शर्मिंदा होने के बजाय फिर दोस्तों में और चिट चैट में ऐसी बातें करे तो वो बच्चियां भी फिर किसके नक्शे कदम पे चलती हैं, ये देखने की बात है। और अब खुद इकरार करिए, ढिठाई के साथ अपने रोमांस और अपने फ्लर्ट्स पेश कर रही है, मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा। शौहर को क्या कहा, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों में लोग अक्सर सच खोल देते हैं, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा, बुद्धू था, बेवकूफ था, ये मर्द मेरे हाथों में ना आया, ये अंदाज है। और जो कुछ मैं इसे कह रही हूं अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। धमकियां। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। आज का जवान जिस चीज के लिए तड़पता है, ख्वाब देखता है, यूसुफ ने उससे कैद को बेहतर समझा, सोचने की बात है। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार, बातनी हुसन का मुरक्का, गुनाहों के फितने में मुब्तला लोगों के साथ रहने की बजाय कैद खाने को तरजीह दी, ये हमारी यूथ के लिए मैसेज है। अल्लाह तला से दुआ मांगी, कैद खाने में भी जाकर अभी आप देखेंगे तबलीग करते दिखेंगे, कोई भी गुनाहों के फितने में मुब्तला हो सकता है, इससे ये भी पता चलता है। और दुआ और गुनाहों से बचने की तौफीक अल्लाह से मांगिए। अगर आप किसी गलत चीज का शिकार हो चुके हैं तो अल्लाह से दुआ कीजिए, वो निकाल देगा। तो क्या देखा, 1 से 32 आयात में कुरान करीम एक आम फहम किताब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुशगुन ख्वाब, बिरादरान यूसुफ की सिफारिश, यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के घर में आ गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकीजा किरदार की आला मिसाल बने और बेगमाते मिस्र यानी वजीरों और मशीरों की बीवियां, उनका मकर और फरेब। अल्लाह ने किसकी सुनी, यूसुफ की सुनी, कैसे, इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों के दाव पेच से इससे फेर दिए, यानी वो औरतों की बातों में ना आए, यकीनन वो सुनने वाला और जानने वाला है। फिर इन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी इन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें। इस तरह बेगुनाह यूसुफ पहले कुएं में गिराया गया और अब कैद में, यही जिंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे तो आप सीखेंगे। इसके साथ ही दो और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए, इनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं, हमें आप इसकी तबीर बतलाइए, हमें तो खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं, जेल में भी मोहसिन का लकब पाया, अपनी बेटी की ऐसी तरबियत कीजिए कि कड़वे से कड़वे लोगों में चली जाए तो दांतों की तरह जुबान को अपने आप को बचाने वाली बन जाए, आपकी गवाही वो अच्छी जो दूसरा दे, आप तो अपने आप को अच्छा कहते ही हैं और अपने बच्चों को भी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर जगह एक लकब मिलता देख रहे हैं आप इस सूरत मोहसिनीन, अल्लाह हमारी नस्लों को मोहसिन बना दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मेरे रब ने सिखाया, मैंने इन लोगों का मजहब छोड़ दिया है। जी ये डिक्लरेशन ऑफ फेथ देनी पड़ती है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का। हमें हरगिज़ ये लायक नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें, हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह ताला का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या मुतफरक कई एक परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? पहले कभी तबलीग नहीं की, अब उनको जरूरत पड़ी तो का थोड़ी सी बात सुननी पड़ेगी, तो ये भी तबलीग का बहुत प्यारा नुक्ता है। इसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद खड़ लिए। अल्लाह ताला ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह की है। इसका फरमान है कि तुम सब सिवाय इसके किसी और की इबादत ना करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, देखिए काफिर भी हैं और कत्ल के इल्जाम में भी हैं, और यूसुफ कितने प्यार से पुकारते हैं या साहिब या सिच, तो अच्छा अखलाक बनाइए तो इनशाला लोग आपकी बात भी सुनेंगे। तुम दोनों में से एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा, और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे इस काम का फैसला कर दिया गया, और जिसकी निस्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुमान था कि इन दोनों में से ये छूट जाएगा, इससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। ये बशरी तकाजे थे और यूसुफ ने असबाब इस्तेमाल किए, लेकिन हुआ क्या, फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया, और यूसुफ ने कई साल कैद खाने में काटे। पिछले पारे की आयत याद कीजिए, लई यूसी बना इल्ला मा कतबल्लाहुलना, असबाब इख्तियार कीजिए लेकिन जो तकलीफ आनी होती वो आके रहती है। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी फरबा गाय हैं, यानी मोटी, जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ऐ दरबारियो, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो उड़ते उड़ाते परेशान ख्वाब है। कितना गुस्सा आया होगा बादशाह को, आज भी आपको गुस्सा आता है जब आप बड़े मजे से ख्वाब सुने, अगला कहता छोड़े छोड़े बेकार बातें हैं। और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं। इन दो कैदियों में जो रहा हुआ था इसे मुद्दत के बाद याद आया, कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता देता हूँ, मुझे जरा जाने की इजाजत दीजिए। जब जिक्र हुआ ख्वाबों का तो हजरत यूसुफ याद आ गए। अब देखिए आए हैं न सॉरी न से कि क्या हुआ, माफ कीजिए मुझे अपने काम का था, मैंने नहीं किया। नहीं, सीधी बात, ऐ यूसुफ है बहुत ही बड़े सच्चे यूसुफ। उनको पता था यूसुफ ताना नहीं देंगे। अच्छा जी, मैंने काम कहा था और आपने किया ही नहीं। नहीं, आप हमें इस ख्वाब की तबीर बतलाइए कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्स खोशे हैं, और 7 ही दूसरे भी बिल्कुल खुश्क, ताकि मैं वापस जाकर इन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कोई गिला गुजारी नहीं, बल्कि उनके ख्वाब की ताबीर नहीं बल्कि तदबीर भी देंगे कि तुम 7 साल तक पैदर पे लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना, और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मकदार के। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इसके लिए जखीरा रख छोड़ा था, सिवाय इस थोड़े से के जो तुम रोक रखते हो। इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पर खूब बारिशें बरसाई जाएंगी, और इसमें शीरा अंगूर यानी अंगूर का जूस भी बहुत खूब निचोड़ेंगे। ताबीर भी दी और तदबीर भी दी। तो क्या सीखा 33 से 49 में? अल्लाह की तौफीक के बगैर पाकीजा रहना नामुमकिन है। दो कैदियों के ख्वाब, कैद खाने का हकीमाना वास, हजरत यूसुफ ने बहुत नफेतुल अंदाज में तबलीग की, कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई, बादशाह का ख्वाब सुना और उसके ख्वाब की ताबीर दी। अब देखिए यूसुफ की जिंदगी का एक अगला खूबसूरत दौर शुरू हो रहा है पारे के आखिर में, और बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास वापस जाओ और इससे पूछ के इन औरतों का हकीकी वाक्या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। देखिए फिर भी नहीं औरत का जुर्म बताया और न सहेलियों का, बल्कि किनायतन की बात। ये होते मोहसिन, लोगों की बुराइयां नहीं उछालते। इनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा परवरदिगार ही है। बादशाह ने पूछा, ए औरतो, इस वक्त का सही वाक्या क्या है? जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को इसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी, उन्होंने साफ जवाब दिया कि माज अल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात निथर आई, मैंने ही से वरगलाया था। देखिए 3 कोटेशन है इस औरत की, शौहर के सामने कुछ, सहेलियों के सामने कुछ, और अब बड़े दरबार में सच बोलती है। इसको कहते हैं सच को आँच नहीं, इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज जान ले कि मैंने इसकी पीठ पीछे इसकी कोई खयानत नहीं की। क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खयानत करने वाले नहीं थे, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। तो ये था किस्सा यूसुफ का वो हिस्सा जो 12 नंबर पारे में है। कल इंशाल्लाह पिछले पारे का खुलासा भी होगा। यहाँ देख लेते हैं 50 से 52 आयतों में क्या देखा, बादशाह की तलबी और यूसुफ का इनकार। ये होती है इज्जत और गैरत, कि पहले लगा हुआ इल्ज़ाम दूर कीजिए, क्योंकि आगे मुबल्लिग बनना था और मुबल्लिग के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाओ तो लोग उसकी बात नहीं लेंगे। कल याद करवाइएगा तो इमाम बुखारी का वाक़या सुना दूंगी इस पर इंशाल्लाह। बेग माते मिस्र की हज़रत यूसुफ़ के हक़ में गवाही, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए मनसबे ख़ास मुकर्रब बनाए जाएंगे बादशाह के, और अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहे नवाजता है। चंद जेम्स लीजिए, गोल्डन वर्ड्स। सब्र जमील करना है, गुनाहों के फितने से बचना है, इस्तग़फार के फवाद जानकर अपने गुनाहों से इस्तग़फार करनी है, इस्तकामत इख्तियार करनी है। आज के काफिर और मोमिन कल के शकी और सईद होंगे। अमले लिवातत और जिना बुरे माहौल के तोहफे हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को बचा के रखे। चूंकि फितना था गुनाह, और आपने देखा कि इसमें शायद 50 से जायद गुनाहों की बात है, अगर आप गिन लें तो शायद आपकी गिनती इससे भी ज्यादा हो जाए, तो क्या हल है? गुनाहों के फितने को पहचाने, और ये ना कहें कि हम मजबूत हैं, हम गुनाहगार नहीं हो सकते। नहीं, हमारे बच्चे बड़े नेक हैं, उनको कुछ नहीं होता, ऐसा ना कहें। बुरा माहौल इंसान के किरदार, नजरियात और अकायद पर असरअंदाज होकर गुनाहों का मैलान यानी इंक्लाइनेशन पैदा करता है। अच्छा माहौल, सुहबत सालेहीन, अच्छी महाफिल और मजालिस ईमान को महफूज रखने के कले हैं और फितनों के खिलाफ बचाव हैं। तो खुद को और अपनी नस्लों को इन्हीं किलों में रखिए। कुरान से ताल्लुक, तकवा और ईमान को बढ़ाइए। इस्तकामत फिर दीन इख्तियार कीजिए, इस्लामी शरीयत को नाफिज कीजिए, खुद पर भी, घर पर भी, और इंशाल्लाह फिर साले इस्लामी मुआशरे का क्याम भी होगा। मीडिया को मुसलमान बनाइए, बेहया बेदीनी माहौल और गुनाहों के मुतालिक नफरत जहनों में जगाएं। बुरे दोस्तों, बुरी महफिलों को छोड़ें, क्योंकि बुरे लोगों की सोहबत दिल और रूह को बीमार करती है। और सबसे बढ़कर हलाल रिस्क का एहतमाम कीजिए, और बच्चों के लिए बेहतरीन माँ का इंतखाब करें। लेकिन वो ब्रदर्स जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अब ये नहीं है कि अब आप एक और माँ ढूंढने निकल जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नस्लों को फितनों से बचाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। जाते जाते ज़हन में सवाल आ रहा है कि लोग कह सकते हैं कि अच्छा फिर क्या करें, तो फिर उन्हीं माओं को बेहतर बनाएं जो आपके बच्चों की माएँ हैं, और अभी हिदायत से दूर हैं तो उनको दीन की समझ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला इस वक्त को जो हमने इसमें लगाया, इसको हमारे हक़ में बेहतर बनाए।